कैसे भौतिक जगत जो है इसकी पूर्णता इसी में है कि यहां पर दुख हो, जिससे कि यहां से जाने की हमारी इच्छा जागृत हो। और दूसरी चर्चा ये की थी कि यदि ये दुख आ रहे हैं तो ये कौन दे रहा है, तो उस व्यक्ति को ढूंढना है जो ये हमारे जीवन में दुख दे रहा है, जो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है। कौन है वो व्यक्ति, क्यों ऐसा कर रहा है हमारे जीवन में वो, तो कोई ऐसा व्यक्ति है या ये अपने आप हो रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न का उत्तर समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, इसका नियंत्रण करता कौन है, कौन नियंत्रण में है, किसके हाथ में सब कुछ है। जो एक बच्चा तो जन्म होने से पहले ही उसके घर में इतना सब धन है, उसके नाम पर करोड़ों रुपया है, और एक बच्चा सड़क पर जन्म लिया है, तो ऐसा अत्याचार क्यों, तो ये कौन कर रहा है, किसके नियंत्रण में ये कार्य चल रहा है। तो ये प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक है। और जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तो उसके उपरांत फिर हम जान सकते हैं कि कौन है वो व्यक्ति। तो कौन नियंत्रण में है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर लोग, अधिकांश लोग भगवान की जो सत्ता है, भगवान का जो नियंत्रण है, उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर उनकी श्रद्धा नहीं है। तो कल हमने बताया कि कैसे ये जो पूरे ब्रह्मांड में इतनी सब चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, सूर्य समय पर उग रहा है, सूर्य पर समय पर अस्त हो रहा है, जो ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी के बाद फिर बरसात, बरसात के बाद फिर सर्दी, सर्दी के बाद फिर बसंत, फिर गर्मी, इनका एक क्रम होता है। और क्योंकि इनका एक क्रम होता है तो क्रम होने का अर्थ है कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है, बिना क्रम के ये नहीं चलती हैं। जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि कल चर्चा की थी हमने, जैसे कि यहाँ बताया था आपको, ये जब बगीचा हम देखते हैं तो बगीचा जब हम देखते हैं तो उसके पीछे हम किसको देखते हैं, माली को देखते हैं, जो समय पर घास काट रहा है, समय पर पानी दे रहा है, समय पर खाद डाल रहा है, फल निकाल रहा है, फूल निकाल रहा है। तो इसी प्रकार से इस दुनिया में बहुत सारी चीजें अपने समय के अनुसार हो रही हैं। जैसे कि चित्र दिखाया था आपको, ये किसी ने पेंटिंग किया है, उसका पेंटर का नाम भी लिखा है इधर, कलाकार का। तो जब ये पेंटिंग किसी ने बनाई है और उसको हम इतना आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, इतने करोड़ों रुपए में कई पेंटिंग बिकती है, लाखों रुपए में, लेकिन जिस व्यक्ति ने ओरिजिनल इस व्यक्ति को बनाया है, जिसकी पेंटिंग है, उसको कितना हमें पुरस्कार देना चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो कौन है एक्चुअल कलाकार, वास्तविक कलाकार कौन है, जिसने इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुगंधित फूल, इतने स्वादिष्ट फल, और हर फल में अलग प्रकार की सुगंध और रस, ये सब चीजें बनाई हैं। और हर व्यक्ति जो है वो अलग है, यहां तक कि रेत का हर कण भी अलग अलग साइज का होता है, हर व्यक्ति अलग है। तो कौन इतना उससे बना रहा है। तो संकुचितवादी क्या तर्क करते हैं, उनसे हम तर्क कर सकते हैं, भगवान नहीं है, यह प्रमाणित करने के लिए क्या आप सब जगह जाकर आए हैं, बोलते हैं भगवान नहीं। हम क्या देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसकी हम चर्चा करेंगे। हमारी आंखें बहुत ही सूक्ष्म है, ये सब तो कल बताया, तो अभी आगे इसकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे जिराफ के बारे में बताया, फिर चमगादड़ के बारे में बताया, और फिर ये जो रूबी हमिंग पक्षी जो था, 3 ग्राम का है फिर भी इतना तेज चलता है, ऊंट है, मकड़ी है। तो भगवान की परिभाषा क्या है जानना आवश्यक है, भगवान की परिभाषा क्या है, कि कौन है वो व्यक्ति जो ये नियंत्रण कर रहा है। आजकल के समाज में ऐसा नहीं कि लोगों को कुछ श्रद्धा नहीं है भगवान में। एक बार एक साधु एक गांव में गए, और जब वो गांव में गए तो वहां के जो गांववासी थे उन्होंने बोला, आइए महाराज बैठिए, थोड़ा कथा कीजिए। तो बैठे, और उन्होंने प्रश्न पूछा, आप में से कितने लोगों को श्रद्धा है किसके अंदर? भगवान के अंदर। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो वो चले गए। बोले जब श्रद्धा नहीं है तो क्या फायदा, मैं जाता हूँ। पीछे पीछे आए, भाग रहे, महाराज बैठे 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 बैठे। तो फिर से वो बैठे, फिर से उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप में से किसके अंदर श्रद्धा है? तो सबने हाथ उठा दिया इस बार। तो बोले जब सबके अंदर श्रद्धा है तो फिर क्या जरूरत है, चला मैं। फिर पीछे भागे भागे आए, और फिर पीछे भागे भागे आए तो फिर बैठाया उनको, अरे बैठे बैठो महाराज। तो फिर उन्होंने ये प्रश्न पूछा कितने लोगों के अंदर श्रद्धा है, तो आधे लोगों ने हाथ उठाया इस बार, आधे लोगों ने नहीं उठाया। तो उन्होंने बोला जिन लोगों के अंदर श्रद्धा है, वो जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है उनको समझा दो, मेरी क्या जरूरत है, मैं जाता हूँ। तो कहने की बात यह है कि वही व्यक्ति है, कभी बोल रहे श्रद्धा है, कभी बोल रहे श्रद्धा नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ये भी नहीं बोलता कि मैं बड़ा नास्तिक हूँ, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो बड़े से बड़ा नास्तिक भी बोलता, अरे भगवान कुछ तो करो। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनको भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, वो भी जब अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ रहे थे और उनके और उस उपग्रह में कुछ कमी रह गई और उसके अंदर दो जो लोग बैठे हैं उनकी मृत्यु होने हो सकती है अभी किसी भी क्षण, तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी प्रार्थना करने लगे, अनाउंसमेंट होने लगा टीवी पर कि सब चर्च में सब में जगह कि जाके प्रार्थना कीजिए हमारे देश के नागरिकों के लिए। और यहाँ तक कि जो जब युद्ध होता है तो ऐसा बताया जाता है इंग्लिश में, देर आर नो एथीस्ट इन द फॉक्स होल्स, मतलब कि जब युद्ध होता है और गोलियां चल रही होती हैं दोनों तरफ से, तो कई बार गोली यहाँ से पास से जा रही है, ऊपर से जा रही है, अभी किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। तो उस समय की स्थिति में वो जब युद्ध हो रहा होता है तो बड़े बड़े नास्तिक भी प्रार्थना करते हैं, अरे आज का दिन निकल जाए भगवान। तो ये कहना कि किसी को श्रद्धा नहीं है ये सही नहीं है। ये कहना सही है कि लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, लोग अज्ञान हैं। जो थोड़ा बहुत धर्म का पालन या भगवान के बारे में विश्वास करते भी हैं तो वो भय के कारण करते हैं, उनको डर लगता है कुछ अनिष्ट ना हो जाए, लेकिन जब भय नहीं होता तो भूल जाते हैं। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ऊंचा स्तर नहीं है भगवान में श्रद्धा करने रखने का। और कुछ लोग जो होते हैं वो सामाजिक जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसके कारण भगवान में श्रद्धा रखने लगते हैं कि चलो भाई सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना है। लेकिन आजकल के समाज में तो धर्म का पालन ना करना फैशन बन गया है। यदि आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप समाज के साथ नहीं है, तो धर्म का पालन ना करना फैशन बन गया है। लोग बड़े गर्व से बोलते हैं ना, मैं तो नास्तिक हूं, मुझे भगवान में कोई विश्वास नहीं है, और उनको अच्छा लगता है ऐसे बोलते हुए। और जो लोग माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, उनको थोड़ा डर लगता है कि अरे अरे मैं बोलूंगा भगवान में विश्वास है तो सब लोग मेरी मजाक बनाएंगे। तो उल्टा स्थिति हो गई है। तो ये जो है ऐसे समाज में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना एक शर्म की बात मानी जा रही है, जबकि जो व्यक्ति आपको खाने के लिए दे रहा है, पीने के लिए दे रहा है, हवा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और उस व्यक्ति के प्रति हम थोड़े भी कृतज्ञ नहीं है। जैसे कि गांव में एक व्यक्ति थे, तो उनको एक ऐसी आदत थी, अच्छी आदत थी, कि रोज एक किसी न किसी साधु को बुलाते थे अपने घर में, और साधु को बुलाने के बाद वो उनको बोलते थे आइए हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो एक दिन उन्होंने एक साधु को बुलाया, और जब वो साधु आए तो उनसे पूछने लगे कि साधु महाराज कुछ बताइए भगवान के बारे में। तो हम भगवान भगवान को नहीं मानता। तो ये बहुत गुस्सा हो गया, कौन अरे इतना साधु के कपड़े पहन के रखा है, बोले भगवान को नहीं, भागो यहां से, उसको लात मार के निकालने लगा हूं वहां से। तो उस समय आकाशवाणी होती है, उसको बताया जाता है कि प्रभु जी अपने मोबाइल थोड़े आप वो कीजिए ना, साइलेंट मोड में सब लोग। तो उनको बोलते हैं कि मैं तो इतने सारे नास्तिकों को रोज खिला रहा हूं और तुमको एक नास्तिक को खिलाने में इतनी मुश्किल हो गई। सोचिए, सोचने की बात है ये कि भगवान जो है वो कितने नास्तिकों को रोज खिला रहे हैं, उनका खाना कहीं और से नहीं आ रहा नास्तिक लोगों का। नास्तिक लोगों का भी खाना कहां से आ रहा है, भगवान से ही आ रहा है। वो अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकते अन्न, फैक्ट्री में केवल नट बोल्ट और कंप्यूटर और ये सब भी बनेगा, उसको बैठ के खाएंगे क्या? उसके लिए तो भगवान में ही श्रद्धा की आवश्यकता है, भगवान ही देते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, कि जो अन्न है वो वर्षा से आता है और वर्षा जो है वो भगवान भेजते हैं। वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं मिलेगा, फिर क्या खाएंगे? तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि जो भगवान है वो हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए उन भगवान में श्रद्धा होना आवश्यक है। हर व्यक्ति जो है जब उसके जीवन में कुछ आपदा आती है, कुछ परेशानी आती है, तो वो क्या करता है? वो किसी शक्तिशाली व्यक्ति की शरण लेता है। यहां तक कि जो आदिवासी लोग भी हैं वो भी पहाड़ की, सूर्य की, नदी की, ये जो बड़ी शक्तिशाली चीजें हैं उनकी शरण लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये शरण लेने का स्वभाव है, इससे भी सिद्ध होता है कि कोई ना कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, कोई शक्तिशाली चीज है जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है। तो ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे अनुभव में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना किसी सृष्टिकर्ता के हो गई हो। एक छोटी सी घड़ी भी जो हम पहनते हैं, उसके पीछे कितना बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है उसे बनाने के लिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए एक सुंदर घड़ी खरीद के लाया और आप उसको बोले कहां से मिली आपको ये घड़ी, तो बोलते हाँ उधर समुद्र के किनारे में टहलने गया था, समुद्र में से मिल गई, अपने आप आ गई उधर। तो बोले नहीं, कोई छोड़ के गया होगा, किसी कंपनी ने बनाई होगी, कोई कंपनी का तो ठप्पा है इसके ऊपर है नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये जो भौतिक जगत है जो इतना जटिल है, यहाँ पर कोई भी चीज इतनी सरल नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था जो ऋतुएं हैं ये जो बदल रही हैं ये बहुत जटिल हैं। हमारा शरीर भी जो है उसमें इतनी सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और एक एक सेल की रचना यदि हम पढ़ें विज्ञान में तो एक बड़े शहर से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक बड़े शहर से भी ज्यादा जटिल है वो, इतने सारे उसमें सिस्टम है। और फिर पूरा शरीर में करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं, तो ये सब किसने बनाया है? ये जो आंख है इतनी जटिल है, ये इसका जो मूवमेंट होता है, इसकी जो क्रिया होती है, कोई व्यक्ति बना नहीं सकता। ज्यादा वो किसी दूसरे व्यक्ति की आंख निकाल के दूसरे व्यक्ति की आंख में लगा सकता है। तो ये जो है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि शरीर में कुछ घाव भी हो जाता है तो वो अपने आप भर जाता है कुछ समय बाद, ऑटोमेटिक हीलिंग पावर है हमारी बॉडी में। तो ये किसने बनाई है? ये कोई तो है ना बनाने वाला, लेकिन फिर भी लोग इसको मानते नहीं है। क्यों क्यों मानते नहीं है? कल बताया था मैंने आपको, कोई बता सकता है? हाँ भगवान के नियमों को पालन करना पड़ेगा, इसलिए यदि भगवान ही नहीं है तो फिर नियमों का क्या पालन करना? तो अपने मन में जो आएगा हम वो करेंगे। और दूसरी बात जो है, ये जो लॉ मेकर है ये बड़ा विशेष है, ये जो नियम बनाने वाला है, यदि ये नियम ना हो तो फिर हमारे जीवन में रहा ही क्या? तो इसलिए भगवान की परिभाषा को समझना आवश्यक है। और क्या है भगवान की परिभाषा? भगवान की परिभाषा है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि वो जो गोविंद हैं वो सर्व कारणों के कारण हैं, उनसे ही सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब चीजों का कारण हूं, जैसे कि यहां पर महाविष्णु आप देख रहे हैं, और ये महाविष्णु जो हैं ये जब सांस छोड़ते हैं तो इनके रोम छिद्रों से कोटि कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, और जब सांस अंदर लेते हैं तो सब ब्रह्मांड अंदर जाते हैं। तो भौतिक जगत हो और आध्यात्मिक जगत जो है, उन दोनों का कारण क्या है? उन दोनों का कारण भगवान ही है। तो भगवान की परिभाषा यह है कि भगवान परम स्त्रोत्र हैं सब चीजों के, उनसे ही सब कुछ आता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस जगत में जो भगवान से नहीं आ रही है। तो इसलिए जो एक कृष्ण भावना भावित भक्त होता है, जो भगवत भावित होता है, वो हर जगह कृष्ण को देखता है। ये माइक है, ये फैन है, ये चटाई है, ये लकड़ी है, जो भी है सब भगवान से आई है। इसमें और भगवान में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। भगवान की शक्ति के रूप में भगवान यहाँ पर विराजमान है, लेकिन भगवान अलग भी है। और दूसरा भगवान की परिभाषा क्या है? परम नियंत्रक, कि भगवान से बड़ा नियंत्रण करता कोई नहीं है। हालांकि इस भौतिक जगत में भी हमको नियंत्रण करता दिखाई देते हैं, देखे आपने, हर कोई नियंत्रण करता है। अपने घर में जो है पति होता है वो नियंत्रण करने का प्रयास करता है, पत्नी भी नियंत्रण करने का प्रयास करती है, बच्चे भी अपना अपना कुछ कुछ नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। जो प्रधानमंत्री है वो क्या है? वो भी नियंत्रण करता है ना, लेकिन उसकी नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए, यदि सही सब कुछ सही सलामत रहे तो, नहीं तो बीच में भी सरकार गिर सकती है। और जो नियंत्रण करने की शक्ति है वो भी सीमित होती है, ऐसा नहीं कि वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, बहुत सारी चीजें उसके नियंत्रण में नहीं होती। और जो सीमित करने की जो जगह है वो भी एक छोटा सा देश, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो इस प्रकार से जो नियंत्रण करने की शक्ति है वो बहुत सीमित होती है। हम दूसरों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम तो अपने शरीर को भी नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे शरीर में दांत में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, अलग अलग अंग में कुछ हो गया, तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ज्यादा उसके ऊपर। तो ये बहुत सीमित नियंत्रण है। लेकिन भगवान जो है उनकी परिभाषा क्या है? कि वो कौन है? परम नियंत्रण करता है, उनके हाथ में सब कुछ है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उनके इच्छा के बिना हो जाए। तो आप बोलेंगे कि सब बुरी चीजें भी उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रही हैं, तो वो हम बाद में चर्चा करेंगे कल। लेकिन सब कुछ उनके नियंत्रण में है, उनकी इच्छा से हो रहा है। और तीसरी बात है वो क्या है? परम स्वामी है। वो परम स्वामी है। परम स्वामी का अर्थ क्या है? कि सब कुछ उनका है, सब कुछ उनका है। हम कई बार सोचते हैं कि ये जो है, ये जो घर है ना, मैंने इतनी मुश्किल से खरीदा है तो ये मेरा है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, सरकार को यदि कुछ सड़क बनानी है, कुछ बड़ा कुछ बनाना है, तो वो घर छीन लेती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बड़ी रोड बनानी है तो जमीन या घर छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम उस किसी भी चीज पर नहीं बोल सकते कि मैं इसका मालिक हूं। लेकिन सरकार क्या उसका मालिक है? सरकार भी बदलती रहती है, सरकार भी मालिक नहीं। तो इस जगत में जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है, वो बदलता रहता है। जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में बैठे, यहां से मान लीजिए हमें मड़गांव जाना है, गोवा जाना है, तो बड़ी मुश्किल से टिकट बुक किया, 2 महीना पहले गए, जाके बैठे, सीट मिल गई, 12 घंटे बाद जब पहुंच गए तो बोले नहीं ये तो मेरी सीट है, मैं कैसे छोड़ूं। बोले उतरो महाराज, अभी समय हो गया, अभी पैसा वसूल, अभी आपकी सीट नहीं है, अभी दूसरा व्यक्ति अभी चढ़ने वाला है इसमें, अभी उसकी हो गई है। तो ये जो है, ये स्वामित्व जो है थोड़े समय के लिए रहता है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो भगवान का स्वामित्व है वो सदैव रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। और वो एक छोटी छोटी चीजों के स्वामी नहीं है, बल्कि सभी चीजों के स्वामी है। और चौथी चीज है कि वो कौन है? परम भोक्ता है। वो परम भोक्ता है। परम भोक्ता का अर्थ क्या है? कि जो कुछ भी है वो उनके भोग के लिए है, जो कुछ भी है वो उनके भोग के लिए है। तो ये थोड़ा स्वीकार करना मुश्किल पड़ता है कई बार, इसलिए लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान से, इसलिए उनको पसंद नहीं है भगवान कृष्ण की आराधना करना, क्योंकि कृष्ण जो है गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और उनको लगता है कि अरे मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों स्वामी नहीं हूं, मैं भोक्ता क्यों नहीं हूं। लेकिन वो पदवी उनकी है, क्योंकि भोक्ता वो ही हो सकता है जो किसी चीज का स्वामी हो। उल्टा जाएंगे अभी, भोक्ता कौन हो सकता है? जो स्वामी हो, जो ओनर हो। मान लीजिए किसी की मिठाई की दुकान है, तो वो मिठाई की दुकान का मालिक है, वो स्वामी है, तो कोई भी मिठाई उठा के खा सकता है, वो कोई रोकने वाला है उसे? आप जाके कोई भी उठाएंगे तो मारेगा पकड़ के। और स्वामी कौन है? जिसका उसके ऊपर नियंत्रण है, क्योंकि उसका नियंत्रण है उस दुकान के ऊपर, कौन सी मिठाई बननी है, कितनी बननी है, किसको किस दाम पे बेचनी है, तो इसलिए वो उसका स्वामी है। और नियंत्रण करता कौन है, जो स्रोत है उस चीज का, मतलब उसने अपना पैसा उसमें लगाया है दुकान में, इसलिए वो उसका नियंत्रण करता है। तो क्योंकि भगवान ने सब कुछ बनाया है, भगवान को पता है कैसे बनाया है, भगवान उसका नियंत्रण कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं तो इसलिए वो स्वामी है, और क्योंकि स्वामी है इसलिए वो क्या है, भोक्ता है। लेकिन हम कृत्रिम रूप से भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, हमारा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बोलते हैं ये सब मैंने कमाया। कमाया क्या, इधर का उधर से लेके आया तू, आया तो भगवान से ही ना, तुमने आपस में कुछ नियम बना लिए कि इतना पैसा देके माल लेना है, लेकिन माल आया कहां से है? जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी अमंग थीव्स, जैसे कि एक बार कुछ चोरों ने मिलके एक बैंक लूटा और बोले देखो अभी हम सब इतनी मेहनत से सब चोरी की है तो बहुत ही ईमानदारी से आपस में बांटना है, तो बड़ी ईमानदारी से उन्होंने आपस में बांटा, तो उसको बोला जाता है ईमानदारी। तो ये ईमानदारी जो है, ये ईमानदारी कही जाएगी क्या, ये ईमानदारी है क्या है फिर, नहीं तो ये ईमानदारी है चोरी है, आप बोलिए। लेकिन वो तो बोल रहे हैं हमने इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम आपस में बोलते हैं देखो ये आपका ये मेरा, लेकिन है किसका, भगवान का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब चोर हैं यदि भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं। यो भुंगते स्तेन एवसा, भगवान बोलते हैं भगवद्गीता में कि जो मेरे को भोग लगाए बिना खा रहा है वो कौन है, चोर है वो। स्तेन मतलब चोर। जैसे कि अभी कुछ साल पहले बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ट्रेन में, तो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं ऐसे नहीं कि फेंक दिया ऐसे, उसके लिए कितना प्लानिंग लगता होगा ना, पर्टिकुलर ट्रेन में बॉम्ब लगाना, उसमें बॉम्ब में भी इतना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है, फिर दूर जाके उसको ब्लास्ट करना, या उसमें एक टाइम बॉम्ब रहता है, फिर प्लानिंग रहती है, कितना डेडिकेशन, कितना समर्पण की आवश्यकता होती है, कितना एक्यूरेसी है, समय व्यवस्था, कितना व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। तो आप बोलेंगे देखो अरे ये आतंकवादी लोग जो है इतने समर्पित हैं, इतना ये पंक्चुअल हैं, समय के पाबंद हैं, तो उसको ग्लोरीफाई करेंगे या उनका जो घिनौना कार्य है उसको हम उसकी हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, निंदा करेंगे। तो ये जो मूल्य है, जो वैल्यूज हैं, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसमें भगवान को बीच में ना लाया जाए। तो कई बार लोग बोलते हैं देखो अच्छे रहो, हम अच्छे हैं, सबके साथ अच्छा करो, लेकिन क्या अच्छे हैं आप, सबसे पहले तो आप क्या हैं, चोरी के माल से आप अच्छाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिक में, जो रूट में, मूल में प्रॉब्लम है। तो इसलिए पहले यह समझना पड़ेगा कि जो चीजें मैं रोज प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं ये कहां से आ रहा है, और क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं ये कहां से आ रहा है, और फिर जीवन में प्रॉब्लम आती है तो बोलते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम तो रूट में है कि जिस व्यक्ति से हम ले रहे हैं उसके प्रति कोई कर्ज नहीं, उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं, और हम बोल रहे हैं सब कुछ मेरा है, ये कोई बात हुई, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए भगवान को जानना आवश्यक है। तो भगवान जो है, भगवान की एक परिभाषा क्या है कि भगवान कौन है, सब चीजों के स्तोत्र हैं, और क्योंकि वो स्तोत्र हैं इसलिए वो क्या है, नियंत्रण करता है, और इसलिए वो क्या है, और इसलिए वो क्या है, इसलिए वो सब चीज का भोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि कृष्ण भगवान इतने सारी गोपियों के साथ नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब उनकी हैं, उनकी संपत्ति हैं। बल्कि हम किसी गोपी को या किसी को लेने का प्रयास करेंगे अपनी संपत्ति समझ के, तो हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण भावना में जब कोई व्यक्ति विवाह भी करता है तो वो पत्नी को अपनी संपत्ति नहीं समझता है, वो उसको कृष्ण की संपत्ति के रूप में स्वीकार करके उसकी निगरानी, उसका संरक्षण करने का वो उत्तरदायित्व लेता है कि दोनों मिलकर अभी हम भगवान की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि आप मेरी नौकरानी और मैं आपका मालिक, मालिक केवल एक ही है और वो कौन है, भगवान, बाकी सब नौकर। और दूसरी परिभाषा भगवान की है, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेया ज्ञान वैराग्यम चैव शणम भंग इतिंगणा, कि भगवान जो है वो क्या है, छह ऐश्वर्यों के स्वामी है। कौन कौन से हैं वो छह ऐश्वर्य? धन, दूसरा बल, इसका बाद में चर्चा होगा और विस्तार से, ख्याति, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान की एक परिभाषा ये भी है, तो भी हम समझ गए कि भगवान की परिभाषा ये होनी चाहिए। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, भारत में इतने सारे लोग हैं जो अपने आप को क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान बोल रहा है तो ये सोने की कसौटी जो है, ये जो परिभाषा है, इससे आप चेक कर लीजिए कि क्या वो व्यक्ति छह गुण है उसके अंदर, छह ऐश्वर्य है, क्या वो सब चीजों का स्वामी है, क्या उसका सब चीजों पर नियंत्रण है। तो ये बेसिक परिभाषा है। तो यदि अब हम समझ गए हैं कि ये भगवान है, एक नियंत्रण करता है, और वही मेरे जीवन में सब नियंत्रण कर रहे हैं, तो अभी कहां ढूंढूं उन्हें मैं, ये अगला प्रश्न उठता है अभी मन में। पहली बात क्या थी कि मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, तो ये कौन दे रहा है, चलो उसकी खोज करेंगे। तो उसकी खोज करने के लिए कोई व्यक्ति है जो नियंत्रण कर रहा है, तो फिर हम समझे कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, नियंत्रण में है, नहीं तो सब कुछ कैसे अच्छे से चल रहा है। और जो वो नियंत्रण कर रहा है, उसका नियंत्रण ऐसा नहीं है थोड़ी थोड़ी जगह पर, उसका नियंत्रण सब जगह है। तो अभी कहां ढूंढे उस व्यक्ति को हम, कहां ढूंढे बताइए। कहां ढूंढेंगे, तो ये जो है यहां पे जो स्लाइड दिखाई है आपको, जो आप देख रहे हैं पेड़ और भूमि, तो पेड़ कहां से आ रहा है, भूमि से आ रहा है। पंखा कैसे चल रहा है, विद्युत से चल रहा है। बाण जो चलाने वाला है कोई, तीरंदाज है वो, उसी तरह कठपुतली नचाने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो अभी उसको ढूंढना है हमें उस व्यक्ति को। तो दृश्य से अदृश्य को प्रमाणित किया जा सकता है कि जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसके पीछे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है। मान लीजिए आप किसी होटल में या हॉस्पिटल में भी कई बार ऐसा होता है कि आप गए और ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है, देखा आपने, ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, और जैसे अंदर गए फिर से दरवाजा बंद हो जाता है। लिफ्ट में भी होता है कई बार ऐसा, घर में भी होता है कुछ लोगों के। या आपने पानी की टैप होता है उसके नीचे हाथ लगाया तो पानी आया, आपको खोलने की जरूरत नहीं है, हाथ हटाया तो बंद हो गया। तो उसको कोई बच्चा बोलेगा अरे तो ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है इसके पीछे कौन है, कोई एक व्यक्ति ने कुछ तो भी इंस्ट्रूमेंट बना के लगाया है ना, जिससे वो सब कार्य हो रहा है। तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। जैसे कि भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा, कि हे अर्जुन मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से बढ़कर ऊंचा सत्य कोई नहीं है। मैं सर्वमिदं प्रोतम, मैं सब जगह हूं, सूत्रे मणिगणाइवा, और मैंने ही सब कुछ धारण करके रखा है। जैसे कि एक जो माला होती है, जैसे कि जिस माला पे हम जप करते हैं या कंठी माला है, उसमें क्या होते हैं, मोती होते हैं। लेकिन उस माला को देख के हम क्या समझ सकते हैं कि माला के पीछे क्या है, धागा है। लेकिन धागा दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, धागा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन धागा दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि धागा नहीं है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति माला को देख के समझ जाएगा कि मोती टिके हैं किसके ऊपर, धागे के ऊपर। उसी तरह कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस ब्रह्मांड को देख के समझ जाएगा कि इसके पीछे कोई है। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने कोटि कोटि जो ग्रह हैं तेज रफ्तार से घूम रहे हैं, समय पर सूर्य उग रहा है, समय पर सूर्य अस्त हो रहा है, अलग अलग प्रकार के नियम हैं। मान लीजिए एक दिन सूर्य बोले कि आज से हड़ताल हमारी 6 महीने के लिए, क्या हो जाएगा, फिर हाहाकार मच जाएगा, सब मर जाएंगे। या एक दिन के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम मतलब जो कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, नीचे आती है, बोले आज छुट्टी, आज हॉलीडे गुरुत्वाकर्षण के नियम का, तो सब उड़ जाएंगे हवा में, सब खत्म, थोड़ा सा ऊपर उठे ऊपर चले गए, तैरते रहेंगे। जैसे अंतरिक्ष में कई बार आपने टीवी में देखा होगा जब वो जाते हैं उपग्रह लेकर, तो वो ऐसे तैरते रहते हैं उधर। तो क्या कोई हम खा भी नहीं पाएंगे, मुंह में भी कुछ नीचे नहीं जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही वो नीचे जा रहा है, वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो ये जो नियम है इनको देखकर हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई है। तो इसलिए हालांकि अभी हम भगवान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भगवान है, कोई नियंत्रण करता है जो इन सब चीजों की व्यवस्था कर रहा है। समझ रहे हैं ये बात? तो अभी उन भगवान को कैसे ढूंढना है, उसके लिए ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए बताया जाता है कि तीन प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तीन प्रकार से क्या किया जा सकता है? ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है शब्द अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण, जो कल के नोट्स हैं उसमें लास्ट पेज पर है। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है कि जो चीजें हम अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी त्वचा से, अपनी जिह्वा से अनुभव करते हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, तो पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले का अस्तित्व हमको पता लग रहा है रसगुल्ले को सूंघकर, खाकर, देखकर, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम सामने देखते हैं और उससे फिर समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने में चार त्रुटियां होती हैं। कौन सी हैं वो चार त्रुटियां, किसी को मालूम है? अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होना, ठगना, हाँ जी, मोहग्रस्त होना। तो जैसे कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? सब कुछ देख सकते हैं? देख सकते हैं? नहीं। क्या क्या नहीं देख सकते? दीवाल के पीछे नहीं देख सकते, और हाँ नहीं देख सकते, और हवा को नहीं देख सकते, और है अंधेरे में नहीं देख सकते, बिजली को नहीं देख सकते, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम नहीं देख सकते। सुन सकते हैं क्या सब कुछ? है और कुछ बताइए। कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो कुत्तों को सुनाई देती हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। बचपन में कुछ लोग जो हैं डॉग विसिल रखते हैं, डॉग विसिल, उसको आप बजाएंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन सब कुत्ते आ जाएंगे भौंकते हुए। तो हमारी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत लिमिटेड है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज का जो एक रेंज होता है उसी में सुनाई देता है। ये बहुत सारे जो ऐसे वेव्स होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते हैं, तो हमारी सुनने की क्षमता भी सीमित है। उसी तरह सूंघने की, उसी तरह से स्पर्श करने की, तो ये जो है ये हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, और अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हम क्या करते हैं? मोह में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, सही चीज को गलत समझ लेते हैं और गलत चीज को सही समझ लेते हैं, और मोह में पड़ने के कारण क्या होता है? हम गलतियां करते हैं, गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो गलतियां करने के बाद क्या करता है व्यक्ति? गलतियों को, किसने गलती की तो क्या करता है वो? छुपाने का प्रयास करता है, तो धोखा करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कोई बहुत अच्छा प्रमाण नहीं है, अच्छी विधि नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की। हालांकि बहुत सारा ज्ञान हम इसी से प्राप्त करते हैं, लेकिन परम सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि परम सत्य जो है वो असीमित है, अनंत है, भगवान अनंत है। भगवान को हम अपनी सीमित इंद्रियों से कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझा जा सकता है। इस भौतिक जगत की चीजों को हम नहीं समझ सकते हैं अपनी असीमित इंद्रियों से, तो भगवान को कैसे समझेंगे। और दूसरा प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब अनुमान लगाना। अनुमान जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति लंगड़ा के चल रहा है, तो कई सारे डॉक्टर बैठे हैं। एक डॉक्टर बोलता है देखो ये लंगड़ा के इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके पैर में दर्द है, वो मेडिसिन वाला डॉक्टर होता है। दूसरा डॉक्टर बोलता है नहीं इसके पैर में कुछ फ्रैक्चर हुआ है। तीसरा कुछ और बोलता है, चौथा कुछ और बोलता है, हैं? लेकिन बाद में जब उससे पूछा जाता तो बोलता है नहीं मेरी चप्पल टूट गई। तो ये अनुमान प्रमाण है, अनुमान लगाना कि ऐसा हो रहा होगा वैसा हो रहा होगा। तो विज्ञान में भी कई बार ऐसा होता है, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं और उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है, फिर उसका क्या लगाते हैं, वो अनुमान लगाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने देख लिया है सब कुछ, कुछ देखा नहीं है, सब अनुमान पे गाड़ी चल रही है। इसलिए जब वो अनुमान गलत हो जाता है तो फिर चेंज कर देते हैं थ्योरी, तो इसलिए सब थ्योरी उनकी बदलती रहती है। तो अनुमान जो है वो सही प्रमाण नहीं है। तो इसलिए तीसरा प्रमाण बताया जाता है, देखिए ये अनुमान है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको इधर। क्या है ये, कोई चीज ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ दिख रहा है किसी को? नहीं, वो छत पे है या फर्श पे है, दोनों है, है ना? तो ये अनुमान है, एक ही पिक्चर है लेकिन दोनों दिखाई दे रहा है। तो ये अनुमान है। अभी इसमें कितने काले वो हैं, डॉट हैं, कोई गिन सकता है कितने काले डॉट हैं? है नहीं उसमें। तो ऐसे ही हमारी इंद्रियां भ्रमित करती हैं। तो ऐसे में क्या हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, है? हम बोलते हैं हमें सब चीजों का ज्ञान हो गया है, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है। छोटा वो आगे बढ़ गया है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें गड़बड़ है, परम ज्ञान नहीं है, वो चेंज होता रहता है। इसके कितने पैर हैं हाथी के? तो ऐसे बहुत सारी पिक्चर हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम भ्रमित हो सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये अनुमान था। तो इसलिए बोला जाता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब कि किसी के पास ऑलरेडी ज्ञान है और उस ज्ञान को आप क्या कर रहे हैं, उससे सुन रहे हैं। कोई प्रमाणिक व्यक्ति है, जैसे कि माता है और वो अपने बच्चे को बोल रही है देखो बच्चा ये ऐसा है ये वैसा है, और फिर बच्चा उसे समझ रहा है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि माइक है, तो फिर आप बोलते हैं ये माइक है। तो ये शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण मतलब एक बोनाफाइड व्यक्ति से सुनना, जैसे कि टीचर है यहाँ पे सिखा रहे हैं और टीचर को पहले से ज्ञान है किसी चीज का और वो उसको सिखा रहा है। तो इसलिए जो शब्द प्रमाण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होता है, 6 अंधे व्यक्ति एक हाथी को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाथी मतलब क्या। तो कोई उसकी टांग पकड़ रहा है तो उसके हिसाब से हाथी मतलब कुछ खंभे। कोई व्यक्ति उसका पेट पकड़ने का प्रयास कर रहा है तो हाथी मतलब कोई दीवार जैसा व्यक्ति। उसकी पूंछ पकड़ने का प्रयास कर रहा है तो हाथी मतलब एक रस्सी के समान। लेकिन जो व्यक्ति के पास आंखें हैं वो समझ सकता है कि हाथी क्या है। उसी प्रकार से जो शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति से सुनना, ऐसे व्यक्ति से समझना जिसके पास क्या है, ज्ञान है, आंखें हैं। तो कौन है वो व्यक्ति? गुरु। जैसे कि कोई बड़ी खबर होती है, मान लीजिए कोई बड़ा हादसा हो गया, तो छोटे छोटे अखबार पे विश्वास करते हैं क्या हम? फिर बड़ा अखबार बीबीसी ऐसा कुछ तो भी है ना, कि बोनाफाइड चाहिए न्यूज। तो उसी तरह से भगवान के बारे में यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो केवल भगवान से ही वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। केवल भगवान ही अपने बारे में जब बताएंगे तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो असंभव है। कोई बड़ा व्यक्ति भी जब होता है, मान लीजिए आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में सब ज्ञान प्राप्त करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि उसके साथ मित्रता करके या उसका कोई संबंधी, उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई पास का निकट का व्यक्ति उसके साथ संबंध बना के जब हम उसके पास जाएंगे तो और जब वो हमें अपने बारे में बताएगा तो हम उसे समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान के बारे में यदि हमें समझना है तो भगवान से ही समझना पड़ेगा या किसी ऐसे व्यक्ति से समझना पड़ेगा जो कौन है, प्रमाणिक है, जिसको भगवान ने नियुक्त किया है किस चीज के लिए, वो ज्ञान देने के लिए। तो इसलिए बताया जाता है अथॉरिटी, प्रमाणिक स्रोत। जब तक प्रमाणिक स्रोत से हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे भगवान के विषय में तब तक हमारा ज्ञान क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इस दुनिया में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक प्रमाणिक व्यक्ति ढूंढते हैं। मान लीजिए किसी को म्यूजिक सीखना है, संगीत सीखना है, तो किसी संगीतज्ञ को ढूंढता है वो। किसी को हारमोनियम सीखना है या सितार सीखना है या गिटार सीखना है तो किसी बोनाफाइड टीचर को ढूंढता है। या किसी को इंजीनियरिंग सीखना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में वो जाता है, मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज में जाता है। लेकिन भगवान के बारे में क्या करते हैं, किसी को भी कोई भी किताब उठा के पढ़ने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा गलत बात है, ये सही बात नहीं है। जब छोटी छोटी चीजों के लिए हम एक प्रमाणिक गुरु ढूंढ रहे हैं तो फिर भगवान के लिए क्यों नहीं प्रमाणिक गुरु ढूंढते, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते आप कौन से इंस्टीट्यूट से हैं, कौन से कॉलेज से हैं, क्या आप जो पुस्तकें पढ़ा रहे हैं वो प्रमाणिक हैं, क्या आपकी जो डिग्री है वो प्रमाणिक है। भगवान के बारे में जब बात आती है तो सब लोग अपने अपना बोलना शुरू कर देते हैं, मेरे आपसे हिसाब से भगवान ऐसे हैं, मेरे हिसाब से भगवान वैसे हैं। तो ये गलत है। जब हम सब चीजों के लिए प्रमाणिक अथॉरिटी ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए भी प्रमाणिक अथॉरिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि यदि प्रमाणिक व्यक्ति को नहीं ढूंढेंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति को, सड़क चलते व्यक्ति को बोले चलो मेरे को तबला सिखाओ, उसको खुद को आता नहीं, वो क्या सिखाएगा, बोले हाँ ठीक है सिखाता हूँ, 200 रुपये महीना देते रहो मेरे को, और वो कुछ तो टांग टूंग 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 कर सिखा रहा है आपको गलत सलत, और आपके पैसे भी गए और आपने गलत कुछ सीख लिया। तो ऐसा होता है आजकल के समाज में, लोगों को अध्यात्म में धर्म में रुचि है लेकिन किसको पकड़ लेते हैं, किसी भी क्वैक को, किसी भी धोखेबाज को, वो पैसा भी ऐंठता है उनसे और कुछ गलत बुलत सिखा देता है, और फिर उनको कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास करो तो वो भी समझने का प्रयास नहीं करते वो। तो यदि हम प्रमाणिक व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा समय भी जाएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए प्रमाणिक व्यक्ति को ढूंढना है। और प्रमाणिकता क्या है किसी व्यक्ति की या किसी शास्त्रों की, जो शास्त्र जो है वो प्रमाणिक है, वो कैसे पता लगेगा, कुछ लोग अपनी किताबें लिखते हैं बोलते हैं ये प्रमाणिक शास्त्र है, तो उसके लिए टेस्ट ये है कि जो प्रमाणिक शास्त्र है उनका जो सार है वो कभी बदलता नहीं है। जैसे भगवद्गीता बोलती है देहिनो इसमिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि जो आत्मा है वो बचपन से युवा, युवा से बुढ़ापा, और फिर बुढ़ापा से फिर दोबारा मृत्यु। तो ये नियम बदलेगा क्या, कभी बदला है कभी है? ये ऐसा ही है, जो व्यक्ति बचपन होता है फिर बड़ा होता है फिर बूढ़ा होता है फिर मर जाता है, हर व्यक्ति के साथ ऐसे होता है। और दूसरा है कि समय के साथ साथ वो सत्य का सत्य ही रहता है, ऐसे नहीं कि भगवद्गीता पहले दूसरी थी और अभी 5000 साल बाद एक नया एडिशन आ गया भगवद्गीता का। लेकिन जो भौतिक ज्ञान होता है वो बदलता रहता है, क्योंकि वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उसको समझने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है कि किसको भी कभी गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता है, कभी गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो 2 और 2 4 होते हैं, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी 2 और 2 4 हैं और भारत की यूनिवर्सिटी में भी 2 और 2 4 ही हैं। तो इसलिए जो पूर्ण ज्ञान है वो कभी बदलता नहीं है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शब्द प्रमाण है वो ज्ञान प्राप्ति के विशेष मार्ग है और जिसके द्वारा हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ये कुछ विशेष बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि भगवान के बारे में कि भगवान को जानने का सौभाग्य किसी भी अन्य भौतिक वस्तु को जानने से अधिक है। ये जो है मेरे लिए ऐसे समीकरण का कोई अर्थ नहीं जो भगवान के विषय में नहीं बोलती, ये थोड़ा आपको मुश्किल जाएगा समझने में लेकिन ये मेरे को दूसरे ने किसी ने दिया था इसलिए मैं रख लिया। हमारी इच्छाओं के परे एक ऊपरी शक्ति है जो अंतिम निर्णय लेती है और न्याय करती है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के शब्द हैं, वो बोल रहे हैं कि हम सब के ऊपर एक शक्ति है जो नियंत्रण कर रही है, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं कि सारे वैज्ञानिक जो है वो नास्तिक होते हैं, कुछ वैज्ञानिक को भगवान में श्रद्धा भी होती है, क्योंकि एक्चुअली विज्ञान का अर्थ है भगवान में श्रद्धा बढ़ाना, क्योंकि विज्ञान के द्वारा हम प्रकृति के निकट आते हैं, प्रकृति को खोजने का प्रयास करते हैं। तो कोई व्यक्ति सही में यदि खुले दिमाग से प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहा है तो वो मजबूर हो जाएगा समझने के लिए कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है। लेकिन जैसे कि हमने कल चर्चा की कि जानबूझकर वो किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्यों? क्योंकि फिर उसके नियम स्वीकार करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये प्लैंक है, ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। ये बोलते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान आरंभ में है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान अंत में है। तो हालांकि विज्ञान, क्योंकि धर्म पहले से ही भगवान को बताता है, लेकिन विज्ञान का अंत क्या होना चाहिए कि विज्ञान हमको भगवान तक लेके जाए खोज करके। लेकिन वो क्यों नहीं लेके जाता है? क्योंकि पहली बात तो उनकी इंद्रियां पूर्ण है, और दूसरी बात यदि कुछ चीज उनको समझ में भी आती है तो उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनको फिर उसका नियम स्वीकार करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो वैदिक ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए शब्द प्रमाण की आवश्यकता है, और शब्द प्रमाण वो है जो हमें एक प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, जो भगवान ने स्वयं वो ज्ञान दिया है। और प्रमाणिकता क्या है कि वैदिक ज्ञान कभी बदलता नहीं है। जैसे कि जो पौधों में जीवन होता है वो कभी ऐसा नहीं कि पौधों में जीवन नहीं था। पहले लोग, वैज्ञानिक लोग समझते थे कि पौधों में जीवन नहीं होता, जो भी चीज चलती है उसके अंदर जीवन है। लेकिन बाद में वो मानने लगे कि अभी पौधों में जीवन होता है। लेकिन जो शास्त्र पहले से ही वो बता रहे हैं, शास्त्र बोलते हैं कि जीव सब जगह है, अग्नि के अंदर भी जीव होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग पहले मानते थे कि अग्नि में जीव नहीं होते हैं, लेकिन अभी वो भी मानते हैं कि अग्नि में भी एक अग्नि का फायर बैक्टीरिया विशेष प्रकार का एक विषाणु होता है जो जीवित रह सकता है। इसी तरह तो हम भी बोलते हैं ना, सूर्य ग्रह पर सूर्य देव रहते हैं, और भी बहुत सारे वहां पर जीव रहते हैं जिनका शरीर जो है वो अग्नि का बना हुआ है। तो लोग जो हैं वो सीमित उनका ज्ञान होता है, इसलिए वो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम का यदि हम तीसरा स्कंद हम पढ़े तो उसमें जैसे बच्चे का जैसे विकास होता है माँ के गर्भ में, उसका पूर्ण विवरण दिया गया है। अभी वो ज्ञान पहले उपलब्ध नहीं था विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, अभी कुछ साल पहले ही वो ज्ञान उपलब्ध हुआ है। लेकिन वो उसके साथ वो समानता है उसकी, जो शास्त्र में पहले ही दिया हुआ है। शास्त्रों में और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि अलग अलग लोगों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, भगवान बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी है, और चाणक्य पंडित के बारे में भविष्यवाणी है, चंद्रगुप्त मौर्य और राजा अशोक के बारे में भविष्यवाणी है। तो ये सब भविष्यवाणियां दी गई हैं किसमें? अलग अलग शास्त्रों में, और ये शास्त्र पहले लिखे गए उन लोगों के आने से पहले। तो ये जो है अभी ये जो शास्त्र हैं ये विशेष हैं। लेकिन कई बार मन में प्रश्न उठता है कि फिर अलग अलग शास्त्र क्यों बनाए? यदि एक ही शास्त्र होता तो कितना अच्छा होता। लोग अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो इसका क्या उत्तर है, कोई बता सकता है? अलग अलग शास्त्र क्यों बनाए गए हैं? देश काल और पात्र के अनुसार। देश काल और पात्र के अनुसार मतलब क्या? जैसे कि एक नर्सरी का बच्चा है या फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसको आप 10वीं क्लास की पुस्तक दोगे तो समझ में आएगा क्या कुछ? या उसको 10वीं क्लास का एग्जाम दोगे समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा समझ में। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग स्तर होते हैं समझदारी के, हर चीज वो नहीं समझ सकते। धर्म के इसलिए अलग अलग स्तर होते हैं। कोई व्यक्ति यदि बहुत पतित है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, उसको बहुत शौक है मांस खाने का, शराब पीने का, और उसको आप बोलो कल से चार नियम पालन करना है आपको, सब कुछ छोड़ के मंदिर में आ जाओ, शेविंग करके फुल टाइम चलो, क्या होगा उसका? कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए धर्म जो है वो सुपरमार्केट के समान है, जो वैदिक शास्त्र है वो सुपरमार्केट के समान है। सुपरमार्केट मतलब जहां पर आपको एक सुई से लेके बड़े से बड़ी चीज मिल जाए। तो यहां पर हर व्यक्ति के लिए प्रावधान किया गया है, हर व्यक्ति के लिए यहां पर सुविधा दी गई है। क्या सुविधा दी गई है कि किसी भी स्तर पे आप क्यों ना हो, आप धर्म का पालन कीजिए और अपने स्तर को ऊपर उठाइए। तो कोई भी धर्म ऐसा नहीं कि नीचा ऊंचा है, वो धर्म उस व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार वो कार्य कर रहा है। जब मोहम्मद साहब रेगिस्तान में प्रचार कर रहे थे, वो जो अरब कंट्रीज हैं उधर मक्का मदीना, तो वो लोग इतने मतलब आदिवासी किस्म के लोग थे कि वो एक दूसरे को खून खराब करके मार ही रहे थे उस समय सब एक दूसरे को। मोहम्मद साहब बोलते हैं कि आपको जैसे जीसस क्राइस्ट भी यही बोलते हैं कि कम से कम विवाह तो करो। इसका मतलब उस समय क्या कर रहे थे लोग, बिना विवाह के रह रहे थे, या अपनी जो माँ है अपनी बहन है उनके साथ भी वो संग कर रहे थे। इसलिए वो बोलते हैं डू नॉट हैव सेक्स विद योर मदर और सिस्टर। तो उन लोगों को इतना ऊंचा ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, तो इसलिए उनको धीरे 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 ऊंचे स्तर पर लाया जाता है। और इसी तरह हमारे जो सनातन धर्म है उसमें भी अलग अलग वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। एक किसी पुराण में दुर्गा की उपासना बताई गई है, किसी पुराण में शिव की उपासना बताई गई है, किसी पुराण में विष्णु की उपासना बताई गई है। तो बोलते हैं अरे दुर्गा के बारे में पढ़ते हैं तो बोलते हैं दुर्गा वो सबसे ऊंची है, शिव पुराण का सीरियल आता है तो शिव जी को सबसे ऊंचा बताया जाता है, और फिर कृष्ण भगवान वाले कृष्ण को ऊंचा बताते हैं। किसकी बात माने, जिसकी दुकान जिसने खोल ली वो अपने को बढ़िया बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो उसका चर्चा आगे होगा। लेकिन उसमें समझने की बात यह है कि कम से कम यदि दुर्गा को वो सुप्रीम मान के कुछ पूजा करेगा तो कम से कम किसी व्यक्ति को तो स्वीकार कर रहा है वो। और दुर्गा जो है भौतिक चीजें दे देती हैं, तो कम से कम भौतिक चीजों के लिए वो किसी देवी देवता के पास आ रहा है, नहीं तो क्या है वो पूरी तरह से नास्तिक है। तो दुर्गा सुप्रीम है, दुर्गा परम है, लेकिन कहां पर सुप्रीम है वो, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, एक ब्रह्मांड में है। जैसे कि कोई बोलता है कि देखो ये यहां के कौन है चेयरमैन है, ये सुप्रीम है यहां के, यहां के सुप्रीम है सोसाइटी के, दूसरी सोसाइटी में उनको घास भी डालने वाला नहीं है कोई, आप समझ रहे हैं बात। या कोई बोलता है ये यहां के प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो यहां पे प्रधानमंत्री हैं, दूसरे देश में जाएगा तो थोड़ा सम्मान मिलेगा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनकी, समझ रहे हैं। यदि आपका नियंत्रण थोड़ा ज्यादा है जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का है तो शायद थोड़ा बहुत सुने लेकिन ज्यादा नहीं। तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सुप्रीम होते हैं, लेकिन वहां पे सुप्रीम है, लेकिन कृष्ण जो है वो सबके ऊपर है। तो इसलिए और उनकी आराधना करने के लिए बहुत ऊंची किस्म का, ऊंची क्वालिटी का, ऊंची गुणवत्ता का जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार की पूजा होती है देवी देवताओं की, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पे धीरे धीरे फिर ऊपर उठता है। तो अलग अलग शास्त्र अलग अलग लोगों की जरूरतों के अनुसार बनाए गए हैं। जैसे कि अलग अलग जैसे डिक्शनरी होती हैं, देख रहे हैं यहाँ पे डिक्शनरी दिखाई दे रही है आपको, एक मेडिकल की है, एक एडवांस लर्नर की है, एक बच्चों के लिए है, एक बहुत बड़ी है। तो जो बड़े डिक्शनरी है उसमें छोटी डिक्शनरी के सारे शब्द हैं, लेकिन जो बड़ा शब्दकोश है वो शब्द उसमें कुछ ऐसे होंगे जो छोटे में नहीं होंगे। तो इसलिए जो राधा कृष्ण की आराधना है वो सबसे सुप्रीम बताई गई है, उसमें जो बहुत सारी चीजें हम चर्चा करते हैं वो कई बार दूसरे रिलीजन में नहीं मिलती हैं, तो इसलिए बड़ा विशेष है। और अलग अलग शास्त्र अलग अलग श्रोताओं के लिए बने हैं और समय काल परिस्थिति अनुसार के अनुसार उद्घाटित किए गए हैं। तो शास्त्रों की तुलना की गई है निर्देशिका के समान, अनुदेश नियमावली के समान। जैसे कि हमने कोई मोटरसाइकिल खरीदे, या जैसे ये एक टीवी का इधर दिखा रहे हैं आप, टीवी है ना, तो टीवी के साथ एक वो आता है मैनुअल आता है अनुदेश नियमावली, कि कैसे इस टीवी को चलाना है, कैसे मोटरसाइकिल में कितना पेट्रोल डालना है, कितना ऑयल डालना है, वो उसकी जगह यदि उसमें पानी डालने लगा तो थोड़ी काम चलेगा। हाँ, तो कैसे उसका रिपेयर करना है, सब कुछ करना है, वो बताया गया है। तो उसी तरह इस शरीर के साथ, ये जो शरीर हमें मिला है उसके साथ एक क्या मिली है हमें, अनुदेश नियमावली मिली है। वो किसने दी है? ये शरीर बनाने वाले ने, जिसने मोटरसाइकिल बनाई उसने वो दिया अनुदेश नियमावली। तो ये शरीर के साथ जो अनुदेश नियमावली मिली है वो कौन सी है? वेद, भगवत गीता, शास्त्र। तो उसमें बताया गया है कि किस तरह शरीर को चलाना है, किस तरह शरीर को आगे बढ़ाना है, किस तरह इसका ध्यान रखना है, किस तरह इसका प्रयोग करना है। लेकिन उसका प्रयोग के बिना यदि कोई अपने जीवन को लगाएगा तो जीवन में प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए शास्त्र को माता बताया जाता है, क्योंकि माता ही बता सकते हैं कि आपके पिता कौन है। तो शास्त्र जो है वो माता के समान है, जो हमें बताते हैं कि हमारे पिता कौन है, वो कृष्ण है। और यदि कोई अपने पिता की जांच डीएनए के द्वारा कराने का प्रयास करेगा, डीएनए करके एक चीज होती है, तो उसके लिए पता कितना समय लगेगा? 800 साल लगेंगे, फिर भी पता नहीं लगेगा। तो ये इसके समान है कि आप अपने हिसाब से भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि माँ के पास जाओ और पूछ लो, भाई पिता कौन है। तो इसलिए शास्त्र के पास जाना है और पूछ लेना है कि कृष्ण हमारे पिता हैं। तो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बताए गए हैं भगवद गीता और श्रीमद भागवतम। क्यों क्यों इनको महत्वपूर्ण बताया गया है, कोई बता सकता है? हाँ? भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी तो पूरे वेद है, वेद भगवान से ही आते हैं। ये इसलिए बताया गया है कि कलयुग में प्रायण अल्प आयुष सभ्य कल अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रता। कलयुग में लोगों की आयु जो होगी वो बहुत कम होगी, लोगों की बुद्धि बहुत कम होगी आध्यात्मिक चीज समझने के लिए, लोग आलसी होंगे आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए, लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम होगी। तो यदि सारे वेद पढ़ते बैठेंगे जिसमें 1,00,000 श्लोक है, कितने श्लोक हैं? 1,00,000 नहीं, 1,00,000,00,000, कितने की जीरो आएंगे 1,00,00,000 में, कोई गिन सकता है कितने जीरो आएंगे एक के आगे? 1,00,00,000 में कितने जीरो होते हैं? तो 10 जीरो, एक के आगे 10 जीरो लगाओ, उतने श्लोक हैं वेद में, वेद पुराण सब मिला के। तो पढ़ते बैठेंगे तो हो गया फिर तो कल्याण, 30-40 साल की उम्र है, 50 साल की, 700 श्लोक की भगवद गीता पढ़ते नहीं है लोग, भागवतम में कुछ 18,000 श्लोक हैं। तो इसलिए बताया जाता है सर्व उपनिषदों गावो, कि जो भगवद गीता है वो क्या है, सब चीजों का सार है, सारे शास्त्रों का सार है। यदि उस भगवद गीता को हम समझ लिए तो जीवन को क्या है, हम सफल बना सकते हैं। नहीं तो कलयुग जो है उसके लक्षण भी बताए गए हैं भागवतम में, जैसे कि मैंने बताया प्राण अल्प आयुष सभ्य, ये भी एक कारण है क्यों हम भागवतम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भागवतम में सब कुछ है। क्या है कलयुग के लक्षण? तदश्चानुदनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया कालेन बलिना राजन नाक्षति आयुर् बलिम स्मृति। कि धीरे धीरे धर्म का, सत्य का, शौचम मतलब स्वच्छता का, क्षमा दया आयु बल और स्मृति का नाश होगा। तो हम देख सकते हैं कलयुग में क्या हो रहा है, धर्म तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत जो धर्म है वो क्या है, फैशन के रूप में है, बल्कि नास्तिकवाद क्या होता जा रहा है, फैशन होता जा रहा है, लोगों को गर्व होता है मैं नास्तिक हूं ये बोलने में। और सत्य, सत्य क्या सत्य है आजकल, अभी छोटा सत्य बोला थोड़ी देर बाद फिर से अपने शब्द बदल देते हैं। पहले कोई व्यक्ति सत्य बोलता था तो वो ऐसा था कि जैसे कोई वचन बोल दिए तो कैसा है कि जैसे पत्थर पे वो लकीर, अभी तो क्या पानी पे लकीर की भी नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन ना जाए, अभी क्या है प्राण, क्या 1 पैसे के लिए लोग झूठ बोलते हैं, 5 रुपए के लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े रकम की बात तो बहुत दूर की है। शौचम, शौचम मतलब स्वच्छता। अभी कई आप बड़े बड़े कंपनी में जाएंगे तो बड़ी स्वच्छ दिखाई देती है, लेकिन स्वच्छ नहीं है। टॉयलेट में जाएंगे तो पानी भी नहीं है धोने के लिए, पेपर से साफ करते हैं, तो क्या स्वच्छ है? सब गंदगी है अंदर से बाहर से। और क्षमा, क्षमा क्या है? क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि सहनशीलता नहीं है। क्षमा तभी करता है व्यक्ति जब उसके अंदर क्या हो, और क्योंकि सहन शक्ति नहीं है तो घर में इतने झगड़े, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी छोटी बात के लिए पति को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, और पति पत्नी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी बात पर झगड़े, तलाक, छोटी छोटी बात पर वो पति को छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देता है, बच्चे झगड़ा करते हैं, तो सहनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रेन में देखिए कितना झगड़ा करते हैं लोग छोटी सी चीज के ऊपर, तो फिर क्या दया? दया कुछ है क्या? दया है, लोग अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए कितने सारे पशुओं को मार रहे हैं, और भारत में तो कितना ज्यादा मारा जा रहा है आजकल, बच्चों का गर्भपात करके बच्चों को मार देते हैं गर्भ में ही, उनको सूर्य की रोशनी भी देखने नहीं देते। और आयु, आयु कितनी है? 100 साल। कितना है, कितना है एवरेज आयु? 60, बहुत हो गया 60 हो गया तो। बल, शक्ति, शक्ति है। अभी भी आप जाएंगे महाराणा प्रताप का जो संग्रहालय है इधर जयपुर वगैरह में, तो उनका जो हेलमेट था वही 13 किलो का था, उनकी जो तलवार थी वो कुछ कितने किलो की थी, 20-25 किलो की, उसको उठा के वो फिर चलाते थे। उनका जो आर्मर था वो कुछ 50-60 किलो का, उसको पहन के वो युद्ध करते थे। तो अभी कुछ सालों में ही इतना शक्ति कम हो गई है, तो पहले कितनी शक्ति हुई होगी लोगों की। अभी तो थोड़ा चलते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, थक जाते हैं। स्मृति, स्मृति तो मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ नंबर उम्बर कुछ याद ही नहीं रहते। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि केवल भगवद गीता और भागवत जो सब चीजों का सार है उसका आप आश्रय लीजिए, और उसका आश्रय लेने से क्या होगा, आपके जीवन में सब प्रकार की शांति आ जाएगी। इसलिए बोलते हैं नो गॉड नो पीस, ये इंग्लिश में है, मतलब भगवान नहीं है तो कोई शांति नहीं है। नो गॉड नो पीस, यदि आप भगवान को जानेंगे तो क्या होगा, सब प्रकार की शांति आपके जीवन में आ जाएगी। तो अभी समझना है कि भगवान एक हैं या अनेक हैं, क्योंकि इतने सारे भगवान हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, समझ में नहीं आता किसकी पूजा करें किसकी ना करें, इतना भ्रम होता है, क्या करें तो क्या करें। तो इसके लिए अभी हम आगे जाएंगे। आज आपको नोट्स दिए हैं, तो भगवान एक है या अनेक इसके बारे में चर्चा होगी अभी। तो अभी समझने की बात यह है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि भगवान के लक्षण क्या हैं, क्या है भगवान के लक्षण, कि कोई उनके समान नहीं है, पहली बात यह बताई थी। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणायवा। और दूसरी बात बताई थी कि भगवान सब चीजों के क्या हैं, श्रोत हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तीसरी बात बताई थी कि भगवान जो हैं सब ऐश्वर्यशाली हैं, एते चमशा कलापुमशा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो ये भगवान है, भगवान श्री कृष्ण जो सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, चाहे वो जड़ हो, ये जो जड़ पदार्थ दिख रहा है आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब किससे आया है, भगवान से आया है। और जो जीवित तत्व हैं, जो जीव हैं, वो भी सब भगवान से आए हैं। यदि आप सातवां अध्याय पढ़े भगवद गीता का तो उसमें इसका वर्णन है। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रश्रधा अपरेयम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाभाव ये एदम धारेते जगत। तो जो पहला श्लोक है 7.3, 7.4 उसमें बोलते हैं भूमि रापो नलो वायु की, भूमि जल वायु अग्नि आकाश ये सब किससे आ रहा है, मेरे से आ रहा है। फिर बोलते हैं जो जीव है अपरेयम इतस्तु अन्यम जो इससे ऊंची शक्ति है जिसके अंदर चेतना है वो भी मेरे से आ रहा है। एतद योनिनी भूतानी भगवान बोल रहे दोनों मेरे से आ रहे हैं। तो भगवान जो है सभी वस्तुओं के स्रोत हैं, जितने भी अवतार हैं वो किससे आते हैं, वो भगवान से आते हैं, और जितने भी देवता हैं वो भी किससे आते हैं, वो भगवान से आते हैं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में नामे विदु सुरगणा प्रभु अमन महर्षया अहम आदिरी देवानाम महर्षि नाम च सर्वश, कि जितने भी देवता हैं ऋषि हैं वो सब किससे आते हैं, मेरे से आ रहे हैं। ये सब दिया है ये नोट्स में आपके, इधर सब श्लोक का नंबर दिया है, तो ये सब श्लोक आप याद कीजिए, तो जिससे कि आप जब कृष्ण की सुप्रीमेसी आपको स्थापित करनी है, कृष्ण का परम स्थिति, तो आप बता सकते हैं। यदि याद नहीं भी हो रहे हैं तो कम से कम नंबर याद कीजिए, जिससे कि भगवद गीता खोल के दिखा सके कि देखो यहाँ पे दिया है। तो श्री कृष्ण का दूसरी परिभाषा क्या बताई थी हमने, एक विशेष परिभाषा कि श्री कृष्ण जो है वो ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव क्षणम भग इतिंगणा, कि भगवान क्या है छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, और वो छह ऐश्वर्य कौन से हैं, पहला है संपत्ति। तो कितनी संपत्ति है भगवान के पास, अनंत संपत्ति है। कई बार लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी देवी एक ही है, यू नो जैसे एक फोटो दिखता है लक्ष्मी देवी का, एक लक्ष्मी देवी खड़ी है उनके हाथ से क्या निकल रहा है, देखा फोटो सबने देखा होगा, क्या निकल रहा है, धन निकल रहा है, लक्ष्मी निकल रही है। लेकिन एक्चुअली यदि ब्रह्म संहिता आप पढ़े जहां पे ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानम, कि हजारों हजारों लक्ष्मियां जो हैं वो लाइन लगा के खड़ी हैं कि हमें थोड़ी क्या मिल जाए, भगवान की सेवा मिल जाए, और सबको सेवा मिलती भी नहीं। तो वो है भगवान। भगवान जब आए तो उनके 16108 रानियों के लोगों ने इतने सुंदर सुंदर महल बनाए, उनका वर्णन हम पढ़ सकते हैं। तो जितना भी है वो भगवान का ही है संपत्ति। और फिर शक्ति, शक्ति कितना है भगवान का, गोवर्धन पर्वत जब भगवान ने उठाया तो 7 दिन और 7 रात भगवान बिना किसी प्रयास के अपने कन की उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे रहे, उसमें उनको कोई थकान का किसी चीज का अनुभव नहीं हुआ। जबकि यशोदा माई को लग रहा था कि नंद महाराज और बाकी सब लोगों ने एक्चुअली पर्वत उठाया और ग्वाल वालों को लग रहा था कि हमने उठाया, अपने डंडे से हमने सपोर्ट दिया, और सब गोपियों को लग रहा था क्योंकि राधा रानी देख रही थी कृष्ण के प्रति, उनकी शक्ति से वो उठा रहे थे। तो इस तरह से जो भक्त हैं उनको वो बहुत ऊंचे स्तर की उनकी भक्ति है, तो वो उनके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको ढक देते हैं वो ऐश्वर्य को। भगवान जो है ऐश्वर्य ज्ञान को ढक देते हैं जिससे कि वो प्रेम का आदान प्रदान हो सके। लेकिन एक्चुअली भगवान के अंदर जो शक्ति है, ये गोवर्धन पर्वत तो कुछ भी नहीं है, भगवान का एक विस्तार अनंत शेष, विस्तार का भी विस्तार, जितने भी कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं उन्होंने अपने फन के ऊपर रखे हैं जो अनंत शेष हैं, और उनको ये जो कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे राई के दाने रखे उनके सिर के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि गोवर्धन पर्वत उठाया तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि नास्तिक लोग स्वीकार नहीं करते कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया होगा, क्योंकि उनके अनुसार भगवान मतलब इतने शक्तिशाली नहीं हो सकते, कोई कृष्ण भी उनके समान ही है उनके अनुसार। तो ये जो है ना संकुचित चेतना है, संकुचित चेतना, अज्ञानमय चेतना, कि भगवान को अपने स्तर पर लेके आना और खुद को भगवान बना देना. यू मेक गॉड इंटू मैन एंड मैन इंटू गॉड. ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि क्या करते हैं वो लोग, भगवान को मानव के स्तर पर ले आते हैं और मानव को भगवान बना देते हैं. कि भगवान कृष्ण भी वो थे, बड़े राजा थे, बड़े राजनीतिज्ञ थे, कुछ शक्तियां थी उनके पास, जादूगर थे, बस इतने ही थे, उससे ज्यादा नहीं. मतलब हमारे जैसे ही थे, आप भी थोड़ा मेहनत करोगे तो उनके जैसे बन सकते हो, आप भी कृष्ण राम सब बन सकते हो. उनका कहने का अर्थ यह है, मतलब किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी खुद की पूजा करो, खुद को भोग लगाओ और खुद ही खाओ सब कुछ. तो इसलिए वो भगवान को अपने स्तर पर लेके आते हैं और आपको भगवान बना देते हैं. अरे उसने इतना अच्छा कार्य किया, वो भगवान क्या अच्छा कार्य किया, थोड़ा सा उसके स्वार्थ में प्रॉब्लम आ गया तो वो अच्छा कार्य खत्म हो जाएगा. तो शक्ति, भगवान की जो शक्ति वो असीमित है, और उनकी जो कीर्ति है वो भी असीमित है. कीर्ति कैसे असीमित है भगवान की, कोई बता सकता है? हाँ जी, अभी तक वो फेमस है, यहां तक कि जितने भी देवताओं के ग्रह हैं सब जगह, सब देवता भी क्या कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं. और नास्तिक लोग भी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या बोल के कि वो नहीं है, लेकिन कर रहे हैं. और क्या है, भगवान का जो सौंदर्य है वो कैसा है, वो बहुत सुंदर है. कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कि जो कामदेव हैं उनके बाणों से कोई बच नहीं सकता है, बड़े बड़े लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन कामदेव ने सोचा चलो आज कृष्ण को भी थोड़ा मोहित करेंगे. तो कामदेव गए अपना ट्रूप लेके, अपना पूरा दल लेकर नृत्य प्रारंभ किया, और जैसे ही कृष्ण को उन्होंने देखा, हाँ, क्या हो गया, वो क्या हो गया कामदेव को, मूर्छित होके गिर पड़े वहीं पे. क्योंकि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष रूपम, कोटि कोटि कामदेव की सुंदरता भी कुछ नहीं है श्री कृष्ण की सुंदरता के सामने. श्री कृष्ण के जो हैं वो इतने सुंदर हैं, तो होने चाहिए ना, यदि भगवान है तो सुंदर होने ही चाहिए. बहुत ही जगह तो मैं बोलते हैं ये हमारे भगवान है, बड़ी दाढ़ी, आंखें अंदर चली गई हैं, दांत हैं नहीं, बूढ़े हो गए हैं, चला भी नहीं जा रहा है, कहाँ के भगवान. भगवान मतलब सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा यशवान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली. क्या शक्तिशाली, पर्वत उठाया था, आप एक टेबल उठाओ 7 दिन के लिए, एक हाथ पे, कन की उंगली पे उठाओ, ये उंगली पे उठा सकते हैं क्या, नहीं. तो ये दुर्भाग्य है. ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान था वो कितना था, कम था, ज्यादा था, कितना ज्ञान है भगवान के पास, हा? किस चीज का ज्ञान है, कोई चीज ऐसी है जिसका ज्ञान नहीं है, हा? भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मेरे को जो भूत में हुआ वो उसका भी सब ज्ञान है, और जो भविष्य में होगा उसका भी सब ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है. और अर्जुन को जब भगवान ने भगवद गीता को उपदेश दिया तो कुछ पहले प्रिपेयर करके आए थे क्या, नोट्स बना के लाए थे कि चलो आज एक लेक्चर देना है, 700 श्लोक थोड़ा तैयारी करते हैं, और फिर नोट्स देख रहे हैं और बोल रहे हैं. वो तो एक भाव था, अर्जुन की दशा देखकर भगवान बोलना शुरू किए. वो जो ज्ञान है वो भगवान सब चीजों का ज्ञान है, उनको कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ज्ञान भगवान को नहीं है. और सबसे बड़ी चीज है कि इतने सब ऐश्वर्य होने के बाद भी भगवान क्या है, वैरागी हैं, जो सबसे मुश्किल है. हमारे पास कुछ होता है लेकिन वो चीज जब होती है तो हम उससे क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं. लेकिन भगवान ये सब ऐश्वर्य होने के बाद भी अपने भक्त का क्या चला रहे हैं, रथ चला रहे हैं, सुदामा के पैर धो रहे हैं, उनको आरती कर रहे हैं, नंद महाराज की चप्पल लेके अपने सिर पे रख के ला रहे हैं, यशोदा माई के द्वारा बंधने के लिए तैयार हैं रस्सी से. तो ये वैराग्य है, वो अपने, उनको ऐश्वर्य का कुछ घमंड नहीं है, कुछ गर्व नहीं है. चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो संन्यास ले रहे हैं, इतना सरल जीवन बिता रहे हैं. तो ये जो वैराग्य है ये सबसे मुश्किल चीज है. वैराग्य भी एक आकर्षण है, एक ऐश्वर्य है, क्योंकि जब किसी के पास वैराग्य होता है तो लोग उसके प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं. तो भगवान के अंदर ये ऐश्वर्य हैं, और भौतिक जगत के किसी जीव के अंदर ये 6 के 6 ऐश्वर्य नहीं हो सकते, और यदि होंगे भी तो 1 या 2, और वो भी थोड़ी मात्रा में, थोड़े समय के लिए. कोई व्यक्ति सुंदर है, कितने समय के लिए सुंदर रहता है, थोड़े समय के लिए. बाद में सुंदर से सुंदर एक्ट्रेस एक्टर फीके पड़ जाते हैं, जैसे कल चर्चा कर रहे थे। शक्तिशाली है मोहम्मद अली, बोल रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, लेकिन अभी तो उनसे अपना हाथ नहीं उठता है, पर उनके ऐसी बीमारी हो गई है। तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े स्पोर्ट स्टार, ओलंपिक में आप देखेंगे इतने सब बड़े बड़े लोग, शक्ति होती है उनके शरीर में, लेकिन 10-20 साल सब वो खत्म हो जाती है। तो भगवान के अंदर ये शक्ति पूर्ण मात्रा में है, कोई इसके समान नहीं है, और ये हमेशा के लिए है, इसलिए भगवान है वो। ये 6 ऐश्वर्य के स्वामी हैं। तो अभी दूसरा प्रश्न मन में उठता है कि भगवान साकार हैं या निराकार हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान की ज्योति है, लेकिन भागवत बोलता है कि भगवान का आकार है और भगवान का आकार नहीं भी है, भगवान दोनों ही है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते, यदि वो भगवान है तो उनको दोनों ही होना चाहिए। तो जो लोग भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में उपासना करना चाहते हैं, भगवान वो है, भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है, लेकिन जो ब्रह्म ज्योति का स्रोत है वो कौन है, वो भगवान है। जैसे कि सूर्य प्रकाश जो है उसका स्रोत क्या है, सूर्य है। तो कृष्ण प्रकाश जो है ब्रह्म ज्योति, उसका स्रोत कौन है, कृष्ण है। तो कई बार आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं सब कुछ ब्राह्मण है, हमको ब्राह्मण में लीन होना है, शांति ओम शांति ओम शांति ऐसा बोलेंगे, तो उनको आप क्या बताएंगे? उनको हम बता सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं और उनके शरीर से जो कांति निकलती है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति है। और जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में जाता है वो ज्यादा समय वहां नहीं रह पाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, शांति शांति है। मान लीजिए आपको बोलेंगे आप एक कमरे में बैठ जाओ, आपको रोज भोजन मिल जाएगा, लेकिन कुछ करना नहीं है, सुबह से शाम तक आप बैठे रहो बस, कुछ नहीं उधर, अंधेरा कमरा एकदम, कुछ नहीं है, एक आदमी नहीं, एक वस्तु नहीं, कुछ नहीं। थोड़े दिनों बाद आप बोलेंगे नहीं मैं कुछ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बाहर आने दो। तो ऐसे ही होता है, ब्रह्म ज्योति में जाके व्यक्ति को क्या लगता है। हाँ, एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी क्यों जो ये ब्रह्मवादी हैं इनका ब्रह्म ज्योति से पतन हो जाता है, तो प्रभुपाद जी थोड़ा सोचे और फिर प्रभुपाद जी ने बोला बिकॉज दे फील लोनली, क्योंकि उनको क्या लगता है, अकेलापन लगता है। तो एक जीव को स्वभाव है आदान प्रदान करने का, प्रेम का, और प्रेम का आदान प्रदान हम किससे कर सकते हैं, केवल एक व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा है कि हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में जाने और उन व्यक्ति के रूप में जानकर उनके साथ क्या करें, प्रेम का आदान प्रदान करें। तो भगवान जो है वो क्या है, एक व्यक्ति है, लेकिन जो परम सत्य है उसको अलग अलग स्तर पर समझते हैं लोग, क्योंकि वो अपने आप से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है किसी को पता नहीं ट्रेन क्या है, ट्रेन, तो वो जाता है और वो देखता है कि सामने से एक लाइट आ रही है, तो बोलता ये लाइट मतलब क्या, ट्रेन। फिर दूसरा व्यक्ति होता है वो ट्रेन को जाते हुए देखता है दूर से, तो ट्रेन मतलब कुछ बोगियां उसमें। लेकिन तीसरा व्यक्ति वो स्टेशन पर जाता है और देखता है कि ट्रेन मतलब लाइट भी है, उसमें बोगी भी है, और बोगी के अंदर क्या है, कुछ लोग भी बैठे हैं, सामान भी रखा है। या जैसे पहाड़ है, दूर से पहाड़ कैसा दिखता है, बहुत धुंधला धुंधला हरा हरा, एक कुछ तो है हेजी पिक्चर। पास में जाएंगे तो पहाड़ में क्या दिखेगा कि कुछ तो पेड़ है उधर पहाड़ के ऊपर पेड़, लेकिन पहाड़ के अंदर जाएंगे तो क्या दिखेगा कि वहां पर कुछ लोग भी रह रहे हैं, वहां पर पक्षी हैं पशु हैं। तो उसी तरह से जो भगवान की जो समझावट है वो दूर से समझ में क्या आता है लोगों को कि केवल क्या है, वो एक ज्योति है, क्योंकि वो अपने आप से समझने का प्रयास करते हैं उसे, वो किसी प्रमाणिक स्रोत जो भगवान ने खुद ने ज्ञान दिया है उसका आश्रय नहीं लेते हैं, तो ये उनका ब्रह्म ज्योति की समझावट है। या ज्यादा से ज्यादा वो परमात्मा के रूप में भगवान को समझ पाते हैं, परमात्मा मतलब जो एक शांत मुद्रा में चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, शांत एकदम। लेकिन जो भक्त है भगवान का, जो भगवान से स्वयं से ज्ञान प्राप्त करता है उनके भक्तों के माध्यम से, उसको समझ में आता है कि भगवान ज्योति भी हैं जो उनके शरीर से निकल रही है, भगवान एक व्यक्ति भी हैं, और व्यक्ति केवल खड़े हो, एक ऐसे शांति से व्यक्ति खड़े नहीं है, वो क्या कर रहा है, प्रेम का आदान प्रदान कर रहा है। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, ये पूर्ण समझावट है भगवान की। तो ये समझना बहुत आवश्यक है हमें। तो अभी प्रश्न उठता है कि तो फिर देवी देवताओं का स्थान क्या है, ये देवी देवता कहां पे आए फिर? यदि भगवान ही सब कुछ हैं तो देवी देवता भी है ना, और उनका क्या कार्य है फिर? तो देवी देवता हैं, लेकिन वो देवी देवता कैसे हैं? वो भगवान के ही अंश हैं, वो भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि देवी देवता जो है वो अनेक हैं, ये नोट्स में है आपके सब, और श्री कृष्ण जो है वो केवल एक है। तो यदि अनेक हैं तो फिर वो सुप्रीम नहीं हो सकते। सुप्रीम मतलब एक ही होना चाहिए, और वो एक भी ऐसा जिसकी पोजीशन बदले ना। भगवान को ऐसे चिंता नहीं होती कि अरे और 10 लोग नास्तिक बन गए, इस बार वोट बैंक थोड़ा कम हो गया है, इस बार हार जाऊंगा चुनाव में, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया नास्तिक बन जाए फिर भी वो भगवान ही रहने वाले हैं, उनकी गद्दी उनकी सत्ता खत्म होने वाली नहीं है। ये भौतिक जगत तो नास्तिकों के लिए बनाया भगवान ने, कल बताया था ना, कारागार, जो भगवान को नहीं मानना चाहते उनको यहां भेज दिया। तो सब नास्तिक बन जाओ, सब नास्तिक ही है। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान अपनी कृपा के रूप में अपने भक्तों को भेजते हैं, उन्होंने अपने शास्त्रों को दिया है कि जिससे हम उनको समझ सकें। तो ऐसा नहीं कि भगवान की गद्दी खत्म होने वाली है, ये ऐसा भी नहीं कि चुनाव करके वो भगवान बन गए। जैसे कि एक मंदिर में कहीं तो अफ्रीका में एक भक्त गए, और वहां पे ऑल्टर में बहुत सारे भगवान थे, मतलब देवी देवता थे, लेकिन बीच में कृष्ण भगवान रखे थे। तो बोले अरे आप लोग कृष्ण भगवान को मानते हो, इसका मतलब आप उनको सुप्रीम मानते हो, इसलिए आपने बीच में ऊपर रखा है उन्हें। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हंसने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि हमारी कम्युनिटी में सब प्रकार के लोग हैं। तो क्या हुआ कि एक बार झगड़ा हो गया कि कौन बीच में आएगा, कौन ऊपर आएगा। तो झगड़ा हो गया, कोई बोल रहा है ये ब्रह्मा जी सुप्रीम है, ये ऊपर आएंगे, कोई बोला गणेश जी आएंगे, कोई बोला शिव जी आएंगे, कोई बोला दूसरे कोई दुर्गा देवी आएंगी। तो हमने बोला चलो चुनाव करा लेते हैं, इलेक्शन। तो इलेक्शन में कृष्ण भगवान जीत गए, तो इसलिए हमने उन्हें बीच में रख दिया। तो ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि वो सब चीजों के स्रोत हैं, वो सब चीजों के नियंत्रण करता है, वो सब चीजों के स्वामी हैं, वो सब चीजों के भोक्ता हैं, और उनकी स्थिति को कोई भी बदल नहीं सकता है। हम आप उनकी स्थिति को नहीं बदल सकते हैं। बड़े बड़े असुर उनकी स्थिति को नहीं बदल पाए तो हम छोटे मोटे असुर क्या करेंगे। फिर वो अंश हैं, और भगवान क्या है? सर्वोच्च संपूर्ण है। आज्ञाकारी सेवक के रूप में सदैव भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान क्या है? परम पूजनीय है। अब बोले भगवान भी तो पूजा करते हैं ना, कब की भगवान ने पूजा? देवी देवता कब पूजा करते हैं बताइए? देवी देवता जब भी कुछ आपदा आती है तो सब लोग भागे भागे जाते हैं किसके पास? ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके नेता हैं। और फिर ब्रह्मा जी उनको लेके जाते हैं श्वेत द्वीप के किनारे, और वहां सब जाके भगवान की प्रार्थना करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं, दूर से आवाज आती है, दर्शन नहीं मिलते उन्हें, कि मैं आने वाला हूं, चिंता मत करो। लेकिन भगवान भी तो भगवान सब देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है, लेकिन भगवान भी पूजा करते हैं। किसकी? केवल अपने भक्तों की, वो प्रेम के रूप में, जैसे सुदामा की पूजा की, शिव जी की भी पूजा की उन्होंने, उनका गुणगान कराने के लिए। लेकिन उनकी स्थिति में कोई कमी नहीं आती है, उनकी स्थिति वही है। भौतिक प्रकृति के अधीन है जो देवी देवता है, लेकिन भगवान जो है वो भौतिक प्रकृति के परे हैं। तीन गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, भगवान का शरीर, भगवान का मन, वो सत्वगुण रजगुण तमगुण से प्रभावित नहीं हो सकता। जैसे भृगु मुनि जो थे, उनको उनको एक काम दिया गया, सब देवताओं ने उनको एक टास्क दिया कि पता करो कि कौन सुप्रीम है ब्रह्मा विष्णु महेश में, ब्रह्मा विष्णु महेश में पता करो कौन सुप्रीम है। तो सबसे पहले वो कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास गए तो क्या किया उन्होंने, किसी को मालूम है? प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को थोड़ा, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये गुस्सा हो गए। फिर कहाँ गए? वहां पे क्या किया उन्होंने? हाँ, बोले आप क्या, शिवजी भागे भागे आए उनका आलिंगन करने, क्योंकि वो भाई है। तो बोले इतने सांप हैं, सब बिच्छू हैं, ये सब गंदा, छो मत मुझे है? तो पहला जो था वो केवल प्रणाम नहीं किया था, तो यहाँ पे शिवजी को भी थोड़ा गुस्सा है। तो मतलब और ऊंचे स्तर का ये अपमान था कि मुंह से आप बोल के कर रहे हैं, तो मतलब उनको भी पता है कि शिवजी ब्रह्मा जी के ऊपर हैं, तो इनको थोड़ा और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन उनको भी एजिटेशन हुआ, शिव जी को खराब लगा उन्हें। बाद में कहां जाते हैं वो, और क्या किया वहां पर, सीधा जाके एक लात मार दी भगवान की छाती पर। ये तो कितना बड़ा अपमान है, है? लेकिन विष्णु जी क्या बोलते हैं, नारायण जी बोलते हैं, अरे मेरी छाती कितनी कठोर है, भृगुमुनि आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आ गई, मैं आपकी मसाज करूं थोड़ा। तो फिर वो समझ गए, हाँ ये भगवान है, ये भगवान है। तो भगवान कभी तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, कुछ भी हो जाए चाहे, वो अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं शुद्ध सत्व में। विश्व के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जैसे कि सरकार होती है तो सरकार में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उनको अलग अलग कार्य दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है और फिर रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जल मंत्री, अलग अलग मंत्री होते हैं। तो इसी तरह ब्रह्मांड की सरकार है और उसमें अलग अलग कार्य दिए गए हैं देवताओं। ये भगवान की इच्छा के अधीन है, लेकिन भगवान किसी की इच्छा के, केवल एक की इच्छा के अधीन है, और वो कौन है, भक्त। भगवान ये जो है, ये जो देवता हैं, भौतिक शरीर, जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु के अधीन, हालांकि उनको व्याधि और बुढ़ापा नहीं होता होगा देवताओं को, क्योंकि जो स्वर्गलोक हैं वो विशेष हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु वहां भी होती है, लेकिन भगवान का शरीर इन सबसे अलग है। तो ये दूसरी बात यह कि भगवान का जो है वो शाश्वत स्वामी है और उनका अस्थायी पद है, उनका पद बदलता रहता है। कोई देवता कुछ समय के लिए ही देवता रहता है, उसके बाद वो पदवी उसकी चली जाती है। छीणे पुण्य मरते लोकम विशन्ति, कि मान लीजिए आपने बहुत सारे पुण्य कार्य किए और पुण्य कार्य करके आपको कहाँ मिल गया, देवलोक में देवताओं का स्थान मिल गया। लेकिन वो ऐसा है कि जैसे आपने बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद कहाँ जा रहे हैं आप, एक कहीं घूमने के लिए गए, ऊटी, लोनावाला, खंडाला। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपकी जेब के पैसा खत्म हो रहा है और छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप स्वर्गलोक में रह रहे हैं देवता बन के, तो आपका पुण्य जो है बहुत तेजी से क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, खर्च हो रहा है, जैसे कि जेब से नोट कम होते जा रहे हैं। और जैसे ही पुण्य खत्म होगा, छीणे पुण्य मरते लोकम विशन्ति, जीव नीचे गिर जाएगा। तो अभी जो है ये हो गया ईश्वर और देवता गण की बात, अभी इनके उपासकों की बात करते हैं कि इनके जो उपासक हैं उनमें क्या अंतर है, उन दोनों में अंतर है ना, दोनों के उपासकों में। तो देवताओं के जो उपासक होते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाओं को रखते हुए वो देवताओं के पास जाते हैं, उनको कुछ चाहिए भगवान से, वो देवताओं से। वो ऐसा नहीं कि निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे हैं, यदि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो उनको मार्ग निर्देशित कर दिया जाएगा, किधर कॉल डाइवर्ट हो जाएगा, किधर भगवान की ओर, देवता खुद ही भेज देंगे उन्हें। लेकिन क्योंकि इनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं तो इसलिए वो उनकी आराधना करते हैं भौतिक चीजों से। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की किसी भौतिक इच्छा से आराधना नहीं करते हैं। भौतिक इच्छाओं से आराधना करने में समस्या यह है कि भौतिक इच्छाओं की यदि पूर्ति हो भी जाए तो उससे दुख और बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था, वो पहाड़ पर चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते बहुत थकान का अनुभव करने लगा, तो बोलने लगा, हे राम मुझे घोड़ी दिला दे, कहीं से मुझे क्या मिल जाए, एक घोड़ी मिल जाए, एक घोड़ी मिलती तो कितना अच्छा हो जाता। तो एक घोड़ी आ गई, इच्छा पूरी हो गई उसकी, घोड़ी आ गई तो बड़ा खुश हो गया, घोड़ी पे बैठा। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वो घोड़ी जो थी वो गर्भवती थी, थोड़े समय में एक छोटा बच्चा का जन्म हो गया, तो अभी बड़ी समस्या, वो घोड़ी चढ़ने के लिए आगे तैयार नहीं, क्योंकि बच्चा तो चल नहीं सकता है। तो अभी घोड़ी को चलाने के लिए वो बच्चे को सिर पर रख के चल रहा है अभी आगे। तो बोले, पहले तो अकेला चल रहा था, अभी बच्चे को सिर पर रख के जाना पड़ रहा है। तो ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का परिणाम होता है कि भौतिक इच्छा पूर्ण हो गई आपकी कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन उसको संभालने में फिर और बड़ी सिरदर्दी। तो इतना आसान नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति जब होती है तो इच्छा और बढ़ जाती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो पूरा ही नहीं होता है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, जब वो भगवान की आराधना करते हैं तो बड़ी निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करते हैं। जब भगवान नरसिंह देव प्रहलाद के समक्ष प्रकट हुए तो भगवान ने बोला, प्रहलाद कुछ मांगो, कुछ मांगो प्रहलाद, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद बोलते हैं, मेरे को व्यापारी समझा है क्या, आपकी आराधना व्यापार के रूप में नहीं करता हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, प्रेम में कर रहा हूं। वो कैसा मालिक, वो कैसा नौकर जो जो अपने मालिक को छोड़ दे, और वो कैसा स्वामी जो अपने नौकर को छोड़ दे। तो एक्चुअली आप वैसे स्वामी हैं जो कभी भी अपने दास को नहीं छोड़ते हैं, और मैं भी वैसे ही व्यक्ति हूं जो बनने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी सेवा को कभी छोड़ूंगा नहीं। वो शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम क्या है कि जिसमें जो स्वामी है वो कुछ भी क्यों ना करे आपके साथ, कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, आप उसकी सेवा करते रहेंगे प्रेम के साथ। शुद्ध प्रेम का अर्थ ये नहीं है, पत्नी ये नहीं बोलेगी, देखो हफ्ते में एक दिन सोमवार के दिन 7 से 8 केवल उस समय आपकी सेवा करूंगी, बाकी समय में क्या ड्यूटी नहीं है मेरा। ये बच्चा जो है, बच्चा रात को रोने लगता है 1 बजे, नहीं इट्स नॉट द ड्यूटी टाइम, अभी मेरी ड्यूटी नहीं। 24 घंटा माँ को बच्चे के लिए खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि प्रेम है, प्रेम में वो सेवा करती है। तो उसी तरह अहुत की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रतिष्ठिति, तो जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा अहुत की बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के करता है, उसमें प्रेम होता है, उसमें भौतिक इच्छा नहीं होती है। जैसे कि ये फोटो, ये किसका फोटो है देखो इधर, ये चपाती का फोटो है इधर, और ये ऑल्टर में चपाती की पूजा करता है एक व्यक्ति, ये अपने राधा गोपीनाथपुर गौर गोपालपुर गए थे एक व्यक्ति के घर में। तो ऐसे अलग अलग मनगणत रूप से बोला चपाती की पूजा करते, नहीं एक दिन हम चपाती बना रहे थे और उसमें कुछ विशेष चिन्ह आने लगे तो हमको लगा यही भगवान है तो हम इसकी पूजा करते हैं। कुछ ज्ञान नहीं है लोगों को, कर क्या रहे हैं। उनका उनका जो विश्वास होता है वो फल पर आधारित होता है। उन्होंने कुछ पूजा किया, फल मिला तो विश्वास बढ़ गया, फल नहीं मिला तो खत्म। लेकिन यहां ध्रुव महाराज हैं, निध्रुव महाराज ने हालांकि फल को लेकर उन्होंने अपनी आराधना प्रारंभ की थी कि मुझे संपत्ति मिल जाए, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ, उनकी जो इच्छा थी भौतिक चीज को प्राप्त करने की वो समाप्त हो गई, पूर्णतया वो शुद्ध हो गए। देवी देवताओं की पूजा करना बहुत जटिल है, बहुत जटिल पद्धति है, इतना सरल नहीं है। अलग अलग नियम, अलग अलग कानून, अलग अलग पद्धतियां होती हैं, इतना उपवास यज्ञ, बहुत सारे उसकी विधियां होती हैं, और उन विधियों में यदि थोड़ी कमी रह जाए तो क्या होता है, उसका पूर्णतया फल हमें प्राप्त नहीं होता, फल उल्टा हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में आप पढ़े 6ठा स्कंद, तो वो जो थे वृत्रासुर, वृत्रासुर का जन्म कैसे हुआ, वृत्रासुर का जन्म हुआ क्योंकि इंद्र ने मंत्र का उच्चारण थोड़ा सा गलत कर दिया, इंद्र शत्रु की जगह इंद्र शत्रु बोल दिया। तो ऐसा व्यक्ति मिलने की जगह कि जो जो क्या बोलते हैं उसे, इंद्र जिसको मार सके, इंद्र जिसके द्वारा मारा जाएगा, तो छोटी सी भी गलती हो गई तो उसका उल्टा असर मिल जाता है। और कलयुग में तो कोई मंत्र का उच्चारण कुछ होता नहीं अच्छे से, तो फिर कैसे हम यज्ञ करेंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे। और भगवान कृष्ण की आराधना क्या है, सरल पद्धति है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा है कि आप जड़ में पानी डाल रहे हैं सीधा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा कैसे करेंगे आप, 33 करोड़ की देवी देवता की पूजा बड़ा मुश्किल है करना। यहाँ पे कैलकुलेशन बताई गई है आगे जाके, जो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट बताया जा रहा है कि देवी देवताओं की पूजा जो करता है वो कैसा है। जैसे कि आप दुकान पे जाके जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, क्या मांग रहा है, खिलौना, या किसी के दांत खराब हैं, और दांत खराब होने के बाद वो पैसा लेके जाता है चॉकलेट की दुकान पर और चॉकलेट मांगता है, तो दुकानदार देगा या नहीं देगा? है? देगा ना, उसको पैसा मिल रहा है, उसको ये नहीं पड़ी है आपके लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है, उसके लिए तो क्या है, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन जो उसके पिता हैं वो नहीं देंगे। तो उसी तरह जो भगवान है, जो इसे पिता हैं ये बच्चे के, उसको आवश्यक है वो देते हैं, लेकिन देवी देवता जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं, फिर उससे परेशानी होती है। जैसे भस्मासुर थे, तो भस्मासुर ने तपस्या की, बड़ी कठोर तपस्या, अपने शरीर को काट काट के वो अग्नि में डालने लगे। शिव जी आए, बोले क्या चाहिए? बोले जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। लेकिन उससे क्या हुआ, उसका ही विनाश हो गया, और शिव जी भी परेशानी में पड़ गए, क्योंकि बाद में वो किसके पीछे भागा, शिव जी के पीछे भागा, क्योंकि उनकी उनकी पत्नी के साथ भोग करने की इच्छा थी उसे। तो ये जो है मानसिकता बड़ी खराब है, सी देवी देवताओं की जो उपासना करते हैं उनकी मानसिकता बड़ी खराब है कि वो भोग करने का प्रयास करते हैं, और जिस व्यक्ति से प्राप्त किया है उसको ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की आराधना की और बोल रहा है कि मैं अमर बन जाऊं, मतलब आपसे ही बड़ा बन जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोले मैं अमर नहीं हूं, मैं आपको कैसे अमर बनाऊं? और बाद में उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बताई और जो वरदान मांगे तो उससे उनको ही परेशानी हुई हिरण्यकशिपु, बाद में सब कुछ खत्म हो गया उनका। तो ये जो है, ये जो मांग रहा है लेकिन उसके लिए आवश्यक है या आवश्यक नहीं है वो देवता लोग नहीं देखते हैं, वो उनको देना ही पड़ता है, लेकिन भगवान नहीं देंगे। भगवान आवश्यक नहीं है तो नहीं देंगे, इसलिए लोग भगवान के पास नहीं आते, हरि के पास, बल्कि भगवान छीन लेते हैं, कई बार हर लेते हैं, डर लगता है उन्हें आने में कि अरे तो हरि है, सब छीन लेगा हमारे से, डर लगता है उन्हें। जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पे आते थे, श्यामानंद बाबू बता रहे थे, तो वो आए तो बोले फोन करने आए थे इधर, पहले कॉइन फोन था इधर नीचे, तो बोले चलो ऊपर थोड़ा दर्शन भी ले लो, नहीं उधर जाते हैं हम, किधर, बाबुलनाथ में जाते, बोले उधर जाते हैं ठीक है, लेकिन इधर भी भगवान है, दर्शन तो लेने में क्या है, बोले नहीं वो काम करता है, मतलब इधर क्या प्रॉब्लम, ये हरी है हर लेता है, इधर नहीं जाएगा मैं, तो उनको डर लगता है, क्योंकि जो भगवान है वो हमारे सच्चे हितैषी हैं, यदि वो हर भी लेंगे तो अंततः हमारे को क्या करेंगे, सबसे परम गति प्रदान करेंगे। तो ये जो देवता भगवान की जो सरकार है, इसमें देवता क्या है, केवल उनके पद हैं, और ये पद थोड़े समय में खत्म हो जाते हैं। जैसे बारिश का डिपार्टमेंट किसके पास है, प्रकाश का, उष्णता का, पानी का, वनस्पति का, हवा का, वित्त का। लोग लक्ष्मी को चाहते हैं लेकिन नारायण को नहीं चाहते, तो प्रॉब्लम होता है फिर। लक्ष्मी देवी चंचल हैं लेकिन एक जगह लक्ष्मी स्थित हैं, वो कौन सी स्थिति है, भगवान के चरण कमल, वहां छोड़ के नहीं जाती हैं लक्ष्मी देवी। कुबेर हैं, कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, ये दुर्गा देवी हैं, सब असुरों का वध करती हैं। दुर्गा देवी जो है वो सब असुरों का वध कर रही हैं, जितने बड़े बड़े युद्ध होते हैं वो सब दुर्गा देवी अरेंज कर देती हैं कि असुर आपस में एक दूसरे को मार के मर जाते हैं, दुर्गा देवी को कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे कई बार स्कूल में टीचर एक पनिशमेंट देता है, दो बच्चे शरारत कर रहे हैं तो बोलता है चलो आओ इधर आओ, दोनों खड़े हो जाओ, वो बोलता है तुम इसके कान पकड़ो, और वो बोलता है तुम इसके कान पकड़ो, अभी खींचो, तो वो खींचता है तो ये उसका और जोर से खींचता है, वो खींचता है तो उसका और जोर से खींचता है। तो ऐसे दुर्गा देवी क्या करते हैं, वो असुरों के बीच में युद्ध करा देते हैं, बोले तुम एक दूसरे को मार के मर जाओ, मैं क्यों परेशान हूं। तो कार्तिक के हैं प्रधान सेनापति हैं देवताओं के, ये जो हैं सरस्वती देवी हैं शिक्षा दे की, ये यमराज हैं सब व्यवस्थापन कर रहे हैं, सब जो भी चोर उचक्के सबको क्या करने का, उनको दंड देने का, कोई बच के नहीं जा सकता उनसे। फिर निर्माण का कार्य कौन करता है, ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो सब चीजों के स्वामी हैं, सब चीजों के मालिक हैं। तो इसलिए ये जो सरकार है, और कुल देवताओं की संख्या कितनी है, 33 करोड़। तो यदि दिन में कम से कम यदि 33 सेकंड लें हम, किसके लिए? एक देवताओं की पूजा करने के लिए। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने के लिए 345 साल लगेंगे। केवल दिन में कितना कर रहे हैं हम? 33 सेकंड एक देवता की। तो 345 साल में नंबर आएगा एक बार एक देवता का। तो सारे देवी देवताओं को तो हम जानते भी नहीं है, सबको कैसे संतुष्ट करेंगे? तो इसलिए हम बोल रहे थे कि वो बहुत जटिल है, वो सरल नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान की आराधना क्या है? यथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यन्ति तद स्कंद भुजोपशाखा। यदि आप पेड़ की जड़ में जब पानी डालेंगे तो पेड़ के सब अंगों को पानी मिल जाएगा। अलग अलग पत्ती को, अलग अलग टहनी को, अलग अलग फूल को पानी देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए 33 करोड़ में प्रति सेकंड हमें कितने की उपासना करनी पड़ेगी? लगभग 3,819 देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी हर क्षण। तो क्या आप सभी से परिचित हैं? सब देवताओं को जानते हैं? नहीं। और सबकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। गणेश जी को कुछ और चाहिए, शिव जी को कुछ और चाहिए, शिव जी बेलपत्ती चाहिए, गणेश जी को क्या चाहिए? मोदक चाहिए, फिर सरस्वती को कुछ और चाहिए। लेकिन भगवान बोल रहे हैं पत्पम पुष्पम फलम तो यम, जो है दे दो, कम से कम हो वो दे दो चलेगा, लेकिन प्रेम के साथ दो। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो हैं वो बड़े विशेष हैं, उनसे ही सब देवता आ रहे हैं। और जो ये देवता देते भी हैं दूसरों को, वो किससे लेके देते हैं? भगवान से ही लेके देते हैं। सतया शुद्ध है युष्यत तस्य आराधना मीहते। यहां तक कि जो देवताओं के भक्त होते हैं उनकी जो श्रद्धा होती है देवताओं के अंदर, भगवान भगवदगीता में बोलते हैं वो श्रद्धा भी कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। क्योंकि देवताओं के अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो अपने उपासकों की श्रद्धा को बढ़ा सकें। तो भगवान उन देवताओं की उपासकों की श्रद्धा को क्यों बढ़ाते हैं? वो इसलिए बढ़ाते हैं कि कम से कम किसी की तो आराधना करो। कि देवताओं की पूजा शास्त्रों में बताई गई है। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवान ने फिर देवताओं की उपासना क्यों बताई शास्त्रों में, यदि वो गलत है तो? ये अपने देवता भक्ता यजन्ते अविधि पूर्वकम। भगवान भगवदगीता में बोलते हैं कि देवताओं की पूजा करना क्या है? अविधि पूर्वकम है, वो सही नहीं है। तो फिर क्यों बता रहे हैं भगवान शास्त्रों में? भ्रमित करने के लिए बता रहे हैं क्या? क्यों भ्रमित करना चाहते हैं भगवान हमें? कोई ये प्रश्न आपसे पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे उसे? उसका उत्तर ये है कि भगवान जो है बड़े कृपालु हैं। भगवान चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हम उनके शरण में आए। और ये जो हम देवताओं की उपासना करते हैं तो देवताओं की उपासना भी कैसी है? वो ऐसी है जैसे कि लड्डू के अंदर दवाई मिला के माँ बच्चे को खिलाती है। जब बच्चा दवाई नहीं खाता तो लड्डू के अंदर माँ दवाई रख देती है चुपचाप, और फिर उसको लड्डू को फिर से बना देती है। तो लड्डू खाएगा, ना लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाता है। तो जब व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मा अनुसूत स्वभाया करोपि यद यद सकलम परस्मै नारायण इति समर्पयामि। कि जो भी पूजा देवी देवताओं की होती है वो पूर्ण नहीं होती जब तक नारायण का नाम का उच्चारण ना हो, जब तक उसमें हरे कृष्णा या हरे राम का उच्चारण ना हो। तो जो भी देवताओं की पूजा भी करते हैं वो अनजाने में और जाने में भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण अवश्य करते हैं। तो धीरे धीरे वो मेडिसिन ले रहे हैं और धीरे धीरे क्या होता है? उनका शुद्धिकरण होता है। लेकिन ये मार्ग बहुत लंबा है, बहुत जन्म लग जाते हैं कई बार विष्णु तक आने में। तो इसलिए वो ऐसा है कि जैसे आप धीरे 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 एकदम कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, एक एक स्टेप करके ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? सीधा लिफ्ट में बैठा के भगवान के भक्त हमें ऊपर ले जाते हैं। बोले अब ये सब छोड़ो, सीधा भगवान कृष्ण जो सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं, उनकी आप आराधना कीजिए। और उनकी आराधना करने से क्या होगा? आपको परम गति प्राप्ति होगी। तो इसलिए जो शास्त्रों में देवताओं की उपासना बताई गई है वो गलत नहीं है। हम देवताओं का अपमान नहीं करते हैं, बल्कि जो देवताओं की उपासना करते हैं उनकी मानसिकता गलत है। क्योंकि वो भौतिक चीजों के लिए, भौतिक काम वासनाओं के लिए उनके पास जाते हैं और उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है। भगवान बोलते हैं कि ये जो है अल्प बुद्धि वाले लोग हैं। अल्प बुद्धि वाले लोग हैं क्यों? क्योंकि अल्प बुद्धि क्यों है? क्योंकि देवताओं की पूजा कर रहे हैं लेकिन देवताओं से जो प्राप्त हो रहा है वो कितने समय के लिए है? केवल थोड़े समय के लिए है। अंतवत्तु फलम तेषाम, कि जो फल उनसे मिलेंगे चाहे वो धन के रूप में हो, अच्छे पुत्र के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो, वो सब थोड़े समय बाद छीन लिए जाएंगे। वही दुर्गा जिसकी पूजा कर रहे हैं भौतिक चीजों की प्राप्ति करने के लिए, वही दुर्गा अपने त्रिशूल से उन सब चीजों को उनसे छीनने वाली है कुछ समय बाद, उनका विध्वंस करने वाली है, उनका नाश करने वाली है, लेकिन फिर भी वो मूर्ख उनके पास ही जाते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं अल्पमेधी मत बनो, सुमेधी बनो। कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम संगो पंगास पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, कि जो व्यक्ति कृष्ण की आराधना करता है यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, वो क्या है? सुमेधसा है, वो ज्यादा बुद्धि वाला है। तो भगवान जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि क्षणिक लाभों के पीछे मत भागो, अंतवत्तु फलम तेषाम, बल्कि क्या करो, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्यात, कि थोड़ा भी यदि आप भक्ति करेंगे मेरे प्रति तो बड़े से बड़े खतरा जो है पशुयोनि में जाने का उससे आप बच जाएंगे और मेरी तरफ आएंगे। और यदि आप देवताओं की पूजा करेंगे तो किसके पास जाएंगे? देवताओं के पास जाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि किसी की भी पूजा करो, कुछ भी करो, सारी रास्ते जो है एक तरफ जाके मिल जाते हैं, सारी नदियां जो है वो समुद्र में जाके मिल जाती हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, यदि आप देवताओं की पूजा करोगे तो देवताओं के पास जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के पास जाओगे, लेकिन मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे। इसमें कुछ अन्याय नहीं है। कोई बोलेगा ये क्या अन्याय? वो अन्याय नहीं, लॉजिक है, सिंपल बात है। यदि आप गुरुबाजी उदाहरण देते हैं, बंबई से दिल्ली का टिकट खरीदोगे और दिल्ली की ट्रेन में बैठोगे तो ही दिल्ली पहुंचोगे, तो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये समझना आवश्यक है कि हमें भगवान की आराधना क्यों करनी है, क्योंकि देवताओं की आराधना में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो वो अल्प बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उनसे प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो क्षणिक होता है, नष्ट हो जाएगा। क्या फायदा फिर ऐसी चीज प्राप्त करके? और फिर भगवान की आज्ञा के बिना देवता भी वरदान नहीं दे सकते। जो वो दे रहे हैं वो भगवान से लेके दे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही है। और जो उनका यदि वो उनके लोक में चले भी गए तो वहां से उनका क्या होता है? थोड़े समय बाद पतन हो जाता है। छीणे पुण्य मरते लोकम विशन्ति, और अविधि पूर्वकम है वो, क्योंकि जरूरत क्या है? जब जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को नरिशमेंट मिल जाता है, पोषण मिल जाता है, तो टहनियों को और पत्तियों को और फूल को और फल को पानी देने की कुछ आवश्यकता है क्या? वो अविधि पूर्वकम है। यदि आप हवलदार को जाके बोले, हवलदार जी आप क्या है ना, आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, अरे चुप बोले हैं, सुन लिया तो मार पड़ेगी मेरे को है? तो यदि किसी देवताओं को जाके बोले आप परम भगवान हैं, तो देवता बोले अरे ऐसा मत बोलो भाई, कुछ चाहिए तो बताओ, मेरी पूजा करो, मैं देता हूं आपको, परम भगवान मत बोलो। जब गजेंद्र को पकड़ लिया किसने? मगरमच्छ ने, तो गजेंद्र बोलता है जो सुप्रीम है वो आ जाओ, फूल उठाया उसने, सब देवता भी आए भागे भागे, लेकिन जब उसने बोला सुप्रीम है तो वो पीछे हो गए, बोले हमको नहीं बुला रहा है। देवता लोगों को बड़ा खराब लगता है जब कोई व्यक्ति उनको सुप्रीम बोलता है, वो सुप्रीम नहीं है, उनके स्वामी सुप्रीम है, और उनको अच्छा नहीं लगता कोई उनके लिए भौतिक चीजें भी मांगता है तो, लेकिन उनको देना पड़ता है, उनका काम है वो। उनको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई भगवान की शरण में जाने का प्रयास करता है। तो इसलिए कृष्ण भगवान से यदि संबंध बना लिया ना, तो बाकी सबकी जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी से व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इंद्र को और इन सबको जानते हैं क्या? प्रभुपाद जी ने बोला यदि मेरा कोई राजा के साथ संबंध है, मैं चपरासी को क्यों जानूं? क्या जरूरत है मुझे चपरासी को संबंध बनाने की? एक बार एक राजा थे, और राजा ने बोला आज के दिन सबको जो चाहिए वो मिलेगा, आ जाओ बस। तो पूरा गांव के लोग एक एक करके आए और जो मांग रहा उसको दे रहा, कोई बोला मुझे धन चाहिए, कोई बोला मेरे पास जमीन है, जमीन चाहिए, कोई बोला मुझे आभूषण चाहिए। तो शाम हो गई, सब कुछ बांट दिया, तो फिर भी एक बूढ़ी स्त्री बहुत धीरे धीरे चल के आ रही है, तो बोलता अभी लेट हो गया है, लेकिन वो पूछती है कि कुछ मिलेगा क्या अभी? अभी तो सब बढ़ गया है, ठीक है मांगो क्या चाहिए आपको? अभी तो हो गया, आप बहुत लेट हैं, लेकिन फिर भी मांगो। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपको अपना बेटा कह के बुलाना चाहती हूँ। तो ये क्या वरदान, ये क्या मांग रही है? बेटा कह के बुलाना चाहिए, ठीक है उसमें क्या है? तो राजा ने बोला ठीक है, तो चली गई वो। तो मंत्री बोलता है कुछ दिनों बाद कि उसने आपको अपना बेटा कह के बुलाया, आपकी माँ हो गई फिर वो टूटी फूटी कुटिया में कैसे रह सकती है? आपको अभी महल में बुलाना पड़ेगा उसे। अरे बुलाओ फिर उसे। बुला लिया महल में, महल में रहने लगी। बोले आपकी माँ है? फटे कपड़े पहनिए, अच्छे कपड़े दो, आभूषण दो। तो एक संबंध बनाने से कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, उसको पूरा महल उसके पास, राजा के पास जो था वो सब मिल गया। जो बड़ा प्रधानमंत्री होता है उसका ड्राइवर भी जो होता है वो फटे कपड़े पहन के आएगा तो वो बोले अरे ऐसा मत करो भाई, थोड़ा अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे मेरा ड्राइवर है ये, वही एसी गाड़ी में बैठेगा, वही महल में रहेगा, वही खाना खाएगा जो प्रधानमंत्री खा रहा है बचा हुआ है। तो जो सुविधाएं भगवान के पास है वही सुविधाएं उनके सेवकों को भी मिल जाती हैं जब वो भगवान के साथ अपना संबंध बनाते हैं। तो भक्त जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, कि वो इन सब छोटी मोटी चीजों में नहीं फंसता है। ये छोटी मोटी चीजें जो नष्ट हो जाएंगी, थोड़े समय बाद छीन ली जाएंगी और अंततः वो दुखी लेके आने वाली है, घोड़ी आएगी तो घोड़ी के साथ उसका बच्चा आएगा और परेशानी है। तो इसलिए अच्छा है कि भगवान के साथ संबंध बनाया जाए, और देवताओं को भी सम्मान करना है, क्योंकि देवता लोग भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं। गणेश जी का आजकल उत्सव चल रहा है, लेकिन वो गणेश जी ने ही वेद लिखे हैं। व्यास देव डिक्टेट कर रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो गणेश जी ने ही भगवद गीता लिखी है, और वो भगवद गीता में उनको मालूम है कि भगवान सुप्रीम है। तो उन भगवान की हमें आराधना करनी है, उनकी आराधना करने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, नहीं तो जीवन क्या है वो बेकार है। जो यदि आप बनारस जाएंगे तो वहां से बताया जाता है कि वहां पे कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शिव जी उसके कान में आके राम के नाम का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेव न संशया। यदि कोई मुक्ति देता है तो वो कौन देता है? विष्णु देता है, और कोई नहीं दे सकता। जैसे ये इधर आर्थर रोड में जेल है, तो कई बार वहां पे कुछ लोग घूमते रहते हैं बाहर, और किसी व्यक्ति का मान लीजिए कोई संबंधी अंदर है, तो बोलो क्या चाहिए, अंदर कुछ बीड़ी भेजना है आपके आदमी के पास, कुछ बढ़िया विशेष कुछ चीज, आई कैन सप्लाई डेली। मतलब आपका अंदर जेल आदमी जेल में है लेकिन फिर भी उसको डेली क्या मिलेगा मेरी तरफ से? बीड़ी, दारू या कुछ और खाने की विशेष चीज, आपको जो चाहिए आप मुझे पैसा दो। बोले नहीं, आप उसको छुड़ा सकते क्या बाहर से? बोले वो मैं नहीं कर सकता। तो देवता लोग जो हैं वो आपको जो चाहिए वो देंगे इस भौतिक जगत में, धन संपत्ति जो भी है, सुख संपत्ति आवे दुख मिटे तन का, वो जो चाहिए मिलेगा। लेकिन इस जगत से मुक्ति वो नहीं, वो विष्णु के पास है, वो डिपार्टमेंट उसका है। तो विष्णु के पास जब जाएंगे तो वो, इसलिए मुक्ति जो है वो विष्णु ही देते हैं। तो इसलिए जो भक्त होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो भगवान के पास जाके एक एक प्रहार से, एक लुहार की और 100 सुनार की, एक ही हैमर से वो पूरा सब कार्य सॉल्व कर देता है। और भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों के साथ इतना प्रेम में आदान प्रदान करते हैं कि यहाँ तक विष्णु भी नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो सही नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के स्रोत हैं। क्योंकि विष्णु के साथ आप केवल दास्य रस में ही आदान प्रदान कर सकते हैं प्रेम का। आप नारायण को कभी नहीं देखेंगे कि खेल रहे हैं वो अपने भक्तों के साथ, है ना, कबड्डी या जैसे कृष्ण भगवान खेलते हैं, ऐसा नहीं कि उनके मुंह से मार के वो, जैसे कि भगवान ने किया और उनके मुंह से जो निकला वो पी गए, ऐसे करेंगे नारायण कभी? या रामचंद्र जी के कंधे पर चढ़ के बैठ गया कोई, हनुमान जी मारेंगे पकड़ के उसे, अरे क्या कर रहे हैं स्वामी के मेरे? तो उनका जो भाव है वो दास्य भाव में रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो भाव है वो वात्सल्य भाव, साख्य भाव और माधुर्य जो सबसे ऊंचा भाव है, उसमें प्रेम का आदान प्रदान होता है और उसमें प्रेम बहुत घनिष्ठ हो जाता है। तो विष्णु जो है वो ऐसे हैं कि जैसे कृष्ण भगवान ऑफिस में गए हैं काम करने के लिए, जैसे कि बड़ा बड़ा कोई मंत्री है या कोई अफसर है, तो जब ऑफिस में जाता है तो बड़ा वो एकदम ऑफिस की ड्रेस होती है, उसके साथ सब अदब से बात करते हैं, वो बड़ा ग्रेव रहता है, सब लोग एकदम ऑफिशियल होता है। लेकिन जब वो घर में आता है तो उसकी माँ उसको बोलती है, अरे इतना लेट कर दिया आज, कल से टाइम पर आने का है। पत्नी बोलती है कुछ, बच्चे को बोलते हैं कुछ, बच्चे उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं, तो वो कृष्ण है। कि जब वही विष्णु घर में जाते हैं तो वो कौन हो जाते हैं? बड़ा प्रेम जो है बहुत घनिष्ठ हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण जो है वो बहुत विशेष हैं, उनके साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है वो बहुत घनिष्ठ है, और जो प्रेम का आदान प्रदान वो सभी के साथ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फोटो देखेंगे अलग अलग, जैसे कि यहाँ कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, और जो मोर हैं, जो पेड़ हैं, जो अलग अलग जीव हैं, सब उनके ऊपर अपना प्रेम न्योछावर कर रहे हैं। और यहाँ पर जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए, तो जब प्रकट हुए तो ये वात्सल्य भाव में चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, लेकिन बाद में देवकी के रिक्वेस्ट पर, उनके आग्रह पर वो छोटे बन गए। यहां पर वो वात्सल्य रस में प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, देखिए। और यहां पर क्या कर रहे हैं, माधुर्य, सब गोपियों को संतुष्ट कर रहे हैं। फिर बड़े बड़े असुरों का वध कर रहे हैं, छोटे से बालक के रूप में। भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान को कभी भगवान बनना नहीं पड़ता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति भगवान बन गया तंत्र मंत्र से। भगवान जब छोटे बालक थे तब उन्होंने पूतना का वध किया, और पूतना कितनी थी, 12 मील लंबी थी, 20 किलोमीटर लंबी, और उसके ऊपर छोटे से बालक के रूप में भगवान खेल रहे थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान हमेशा भगवान है, उनके पास हमेशा वो शक्तियां हैं, वो शक्तियां कभी कम नहीं होती हैं। ये तृणाव्रत का वध किया, ये भगवान अग्नि को निगल गए, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने अपने मुख में दिखाया। कोई दिखा सकता है, गोवर्धन पर्वत, ये ब्रह्मा जी, इंद्र जो हैं उनका अभिषेक करा रहे हैं। तो इस तरह से जो देवी देवता जो हैं, ब्रह्मा जी ध्यान लगा के बैठे हैं। मैं बता रहा था ना आपको कि सब देवी देवता आए हैं ब्रह्मा जी के पास, और अभी ब्रह्मा जी सबको लेके गए हैं श्वेत द्वीप के किनारे, और ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे हैं अभी भगवान के ऊपर, और फिर उनके ऊपर वो प्रसारण हो रहा है। यहाँ ग्वाल बालों के साथ वो खेल रहे हैं, ये विस्तार किए हैं भगवान हजारों लाखों रूप में। तो इस तरह से जो भगवान हैं, यहाँ लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही हैं। देखिए लक्ष्मी देवी जिनके पीछे सब भागते हैं वो भगवान के चरण कमल दबा रही हैं, और उनके लिए भी उनको नंबर लगाना पड़ रहा है, भाई अभी थोड़ा मेरे को मिल जाए सेवा। ऐसा बताया जाता है वो झाड़ू लगा रही है लक्ष्मियाँ, कोई धूल नहीं है वैकुंठ में, कुछ धूल नहीं है, फिर भी झाड़ू लगा रहे हैं, क्यों, कुछ सेवा का सेवा मिलेगी भगवान की थोड़ी। तो ये सेवा भाव होता है भक्तों का, कि उनको निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और भगवान ही सब चीजों के स्रोत हैं। एते चमसा कला पुमसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, जितने भी अंश हैं, जितने भी अवतार हैं, जितने भी कला हैं, उनका स्रोत क्या है, कृष्ण है। सारे ब्रह्मांड भगवान से आ रहे हैं, और ये महाविष्णु किससे आ रहे हैं, कृष्ण से आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हम यहाँ पे समाप्त करेंगे आज। आज हमने चर्चा की कि कैसे शुरुआत हमने की थी आज कि कैसे भगवान का अस्तित्व है, और भगवान की परिभाषा क्या है, और भगवान के अस्तित्व के प्रमाण क्या हैं, और फिर भगवान को कैसे हम समझ सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण में, शब्द प्रमाण से। और वो शब्द प्रमाण विशेष क्यों है, क्योंकि भगवान स्वयं वो ज्ञान देते हैं अपने भक्तों को, और वो ज्ञान अपूर्ण इंद्रियों से परे है, क्योंकि भगवान अपूर्ण इंद्रियों से परे हैं, अपौरुषेय, और वही ज्ञान परंपरा के माध्यम से वो हमारे पास तक आता है, एक गुरु के माध्यम से। और फिर हमने भगवान के बारे में चर्चा की कि भगवान कौन है, देवता कौन है, और फिर उनमें क्या अंतर है, देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना में क्या अंतर है। तो ये सब आप समझिए, पढ़िए, शॉर्ट नोट्स आपको दिए गए हैं, और कल हम चर्चा करेंगे कि हम कौन हैं और हमारा भगवान में और भगवान में क्या अंतर है, और बाकी की चर्चाएं कल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, एक दो? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। एक मिनट रुकेंगे।